प्रशासक अध्याय एक। यरूशलेम का अधीन किया जाना। यहोशू की मृत्यु के बाद इसराइलियों ने यहावे से यह प्रश्न किया, कनानियों से युद्ध करने सबसे पहले किसका जाना सही होगा? यहावे ने उत्तर दिया, सबसे पहले यहूदा जाएगा। यह याद रहे कि यह जगह मैंने उसके अधिकार में दे दी है। यहूदा वंशजों ने अपने भाई शिमोन वंशजों से कहा, हमें दी गई जगह में आ जाओ कि हम कनानियों से युद्ध करें, तथा समय आने पर मैं तुम्हें दी गई जगह में आकर युद्ध करूंगा। शिमोन वंशज इसके लिए राजी हो गए। यहूदा वंशजों ने आक्रमण किया और यहावे ने कनानी और परिजी उनके अधीन कर दिए। बेजेक में उन्होंने 10,000 सैनिकों को मार गिराया। बेजेक में उन्होंने अदोनी बेजेक से युद्ध किया और कनानियों तथा परिजियों को मार दिया, मगर अदोनी बेजेक भाग निकला। उन्होंने उसका पीछा किया, उसे पकड़ लिया और उसके हाथों और पैरों के अंगूठे काट दिए। अदोनी बेजेक ने उनसे कहा, 70 राजा जिनके हाथ पैर के अंगूठे काट दिए गए होते थे मेरी मेज की चूर चार इकट्ठा करते थे। परमेश्वर ने मेरे द्वारा किए गए काम का बदला मुझे दिया है। वे उसे यरूशलेम ले गए जहां उसकी मृत्यु हो गई। तब यहूदा गोत्रजों ने यरूशलेम पर हमला किया, उसे अपने अधीन कर लिया, उसके निवासियों को तलवार से मार दिया और नगर में आग लगा दी। इसके बाद यहूदा गोत्रज उन कनानियों से युद्ध करने निकल पड़े जो नेगेव के पहाड़ी इलाकों में तथा तराई में रह रहे थे। सो यहूदा ने उन कनानियों पर हमला कर दिया जो हेब्रोन में रह रहे थे। हेब्रोन का पुराना नाम किरियत अरबा था। उन्होंने शोशाई, अहिमान और तालमाई को हरा दिया। इसके बाद वे वहां से दबीर निवासियों की ओर बढ़े। दबीर का पुराना नाम किरियत सेफेर था। कालेब ने घोषणा की, जो कोई किरियत सेफेर पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लेगा, मैं उसका विवाह अपनी पुत्री अक्सा से कर दूंगा। कालेब के छोटे भाई केनस के पुत्र ओथनियल ने किरियत सेफोर को अधीन कर लिया। तब कालेब ने उसे अपनी पुत्री अक्सा उसकी पत्नी होने के लिए दे दी। विवाह होने के बाद जब अक्सा अपने पति से बात कर रही थी, उसने उसे अपने पिता से एक खेत मांगने के लिए कहा। जब वह अपने गधे पर से उतर गई, तब कालेब ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने उत्तर दिया, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, जैसे आप मुझे नेगेव क्षेत्र दे ही चुके हैं, और यदि हो सके तो वैसे मुझे जल के सोते भी दे दीजिए। तब कालेब ने उसे ऊपर का सोता, नीचे का सोता दोनों दे दिया। मोशे के ससुर के वंशज अर्थात केनीवासी खजूर वृक्षों के नगर से यहूदिया के लोगों के साथ यहूदिया के निर्जन प्रदेश के इलाके में चले गए। यह जगह अराद के पास दक्षिण में है। वे वहां के निवासियों के साथ ही बस गए। तब यहूदा वंशजों ने अपने भाई शिमोन वंशजों के साथ जाकर सेफत में निवास कर रहे कनानियों को मार दिया और नगर का पूरा विनाश कर दिया। सो इस नगर का नाम होर्मा पड़ गया। यहूदा ने अज्जा, अश्कलोन तथा एक्रोन नगर को इनकी सीमा सहित अपने अधीन कर लिया। यहावे यहूदा की ओर थे, उन्होंने पहाड़ी इलाके को अपने अधीन कर लिया, किंतु वे घाटी के रहने वालों को निकाल ना सके क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। उन्होंने कालेब को हेब्रोन दे दिया जैसी मोशे ने उनसे प्रतिज्ञा की थी। कालेब ने वहां से अनाक के 3 पुत्रों को खदेड़ दिया था, मगर बिन्यामीन के वंशजों ने यरूशलेम में रह रहे यबूसियों को वहां से नहीं निकाला। परिणाम स्वरूप यबूसी आज तक बिन्यामीन के वंशजों के साथ यरूशलेम में ही रह रहे हैं। इसी तरह योसेफ के परिवार ने बेथेल पर हमला कर दिया। यहावे उनकी ओर थे। योसेफ के परिवार ने बेथेल का भेद लिया। बेथेल नगर का पुराना नाम लूज था। भेद लेने गए जासूसों ने नगर से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को देखा। उन्होंने उससे विनती की, कृपया हमें नगर में जाने का रास्ता दिखाएं, हम तुम पर कृपा करेंगे। सो उसने उन्हें नगर में जाने का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने पूरे नगर को तलवार से मार दिया, मगर उस व्यक्ति और उसके परिवार को छोड़ दिया। वह व्यक्ति हित्तियों के देश में चला गया, जहां एक नगर बसाया गया जिसका नाम उसने लूज रखा। जिसे आज तक इसी नाम से जाना जाता है। मगर मनश्शे ने ना तो बेत शान और इसके गांव को अपने अधीन कर लिया और ना ही तानक और इसके गांव को, ना दोर तथा इसके निवासियों और इसके गांव को, ना इबलीम और इसके निवासियों और गांव को, ना मगीधो और इसके निवासियों और गांव को। इस कारण कनानी निडर होकर उस देश में रहते रहे। तब वह समय भी आया जब इज़राइली सामर्थी हो गए, तब उन्होंने कनानियों को जबरन मजदूरी पर तो लगा दिया और उन्हें पूरी रीति से ना निकाला। गेजेर में रह रहे कनानियों को एफ्राइम के वंशजों ने नहीं निकाला, इस कारण कनानी गेजेर में उन्हीं के बीच रहते रहे। जेबुलून ने कित्रोन वासियों को नहीं निकाला और ना ही नहलोल वासियों को, इस कारण कनानी उनके बीच में रहते रहे और उन्हें जबरन मजदूर बनना पड़ा। आशेर ने ना तो अक्को के, ना सीदोन के, ना अहलाब के, ना अकजीब के, ना हेलबा के, ना अफेक के, ना रेहोब के निवासियों को निकाला, इस कारण अशेरी कनानी के बीच में ही रहते रहे। जो इस क्षेत्र के मूल निवासी थे उन्हें बाहर निकाला ही ना गया था। नफ्ताली ने बेत शेमेश के निवासियों को नहीं निकाला और ना ही बेत अनात के निवासियों को, वे कनानियों के बीच में ही रहते रहे जो इस देश के मूल निवासी थे। बेत शेमेश तथा बेत अनात के निवासी उनके लिए जबरन मजदूर होकर रह गए। इसके बाद अमोरियों ने दान के वंशजों को पहाड़ी इलाके में रहने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अमोरियों ने उन्हें घाटी में प्रवेश करने ही ना दिया। अमोरी अयाजलोन तथा शालाबीम में होरेस पर्वत पर जबरन रहते रहे। मगर जब योसेफ के वंशज सामर्थी हो गए तब इन्हें भी जबरन उनका मजदूर हो जाना पड़ा। अमोरियों की सीमा अक्रबीम की चढ़ाई से शुरू होकर सेला होते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। प्रशासक अध्याय 2। स्वर्गदूत बोकीम में। यहावे का दूत गिलगाल से बोकीम आया, उसने उनसे कहा, तुम्हें मिस्र देश से निकालकर मैं उस देश में ले आया हूं जिसकी शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों से की थी। मैंने कहा था तुमसे की गई अपनी वाचा मैं कभी ना तोड़ूंगा। तुमसे आशा यह की गई थी कि तुम इस देश के मूल निवासियों से कोई वाचा ना बांधोगे, तुम उनकी वेदियां तोड़ डालोगे। इस कारण मैंने यह भी कहा, मैं उन्हें तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा। वे तुम्हारे पंजर के कांटे हो जाएंगे तथा उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा। जब यहावे के दूत ने सारे इसराइल के वंश से ये कहा, लोग ऊंची आवाज में रोने लगे। इस कारण उन्होंने उस स्थान का नाम बोकीम रखा। उन्होंने वहां यहावे को बलि चढ़ाई। यहोशू की मृत्यु, एक युग का अंत। जब यहोशू सभा को विदा कर चुके, इसराइल के वंश अपनी अपनी मीरास को लौट गए कि वे देश को अपने अधीन कर ले। ये यहोशू तथा यहोशू के बाद पुरनियों के सारे जीवन में यहावे की सेवा और स्तुति करते रहे। ये उन सभी महान कामों के चश्मदीद गवाह थे जो यहावे द्वारा इसराइल की भलाई के लिए किए गए थे। यहावे का दास यहोशू नून के पुत्र की मृत्यु हो गई। इस समय उनकी उम्र 110 वर्ष की थी। उन्होंने उन्हें उन्हीं की मीरास की सीमा के अंदर तिम्नत हेरेस में गाड़ दिया। यह स्थान गाश पर्वत के उत्तर में एफ्राइम के पहाड़ी इलाके में है। वह सारी पीढ़ी भी अपने पुरखाओं के साथ मिट्टी में जा मिली। उसके बाद नई पीढ़ी का उदय हुआ जिसे ना तो यहावे का ज्ञान था, ना ही उन्हें यह मालूम था कि यहावे ने इसराइल की भलाई के लिए क्या क्या किया था। इसराइल के वंशजों ने वह किया जो यहावे की नज़र में गलत है। उन्होंने बाल की उपासना शुरू कर दी। उन्होंने अपने पुरखों के परमेश्वर यहावे को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाए थे, छोड़ दिया। उन्होंने उन देवताओं का अनुसरण करना शुरू कर दिया जो उन लोगों के देवता थे जो उनके आसपास रह रहे थे। वे उन्हीं देवताओं की उपासना करने लगे। यह करके उन्होंने यहावे का क्रोध भड़का दिया। उन्होंने यहावे को छोड़कर बाल तथा अश्तोरेत की उपासना शुरू कर दी। इसराइल पर यहावे का क्रोध भड़क उठा। यहावे ने उन्हें उनके अधीन कर दिया और वे उन्हें लूटने लगे। यहावे ने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथों में बेच दिया जो उनके आसपास रहते थे। इस कारण वे अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। वे जहां कहीं जाते यहावे का हाथ उनकी हानि ही के लिए उठा रहता था। यह सब वही था जिसकी चेतावनी यहावे दे चुके थे, जिसकी शपथ यहावे ले चुके थे। इसराइली बड़ी मुश्किल में आ पड़े थे। तब यहावे ने न्यायियों का उदय किया। इन न्यायियों ने इसराइल के वंशजों को उन लोगों से छुड़ाया जो उनके साथ लूटपाट कर रहे थे। इतना होने पर भी उन्होंने अपने प्रशासकों की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे पराए देवताओं की उपासना करने के द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार अर्थात विश्वासघात करते रहे। यहावे के आदेशों का पालन करने की अपने पूर्वजों की नीतियों से वे जल्द ही दूर हो गए। उन्होंने अपने पूर्वजों के समान व्यवहार करना छोड़ दिया। जब कभी यहावे ने उनके लिए प्रशासक का उदय किया, यहावे उस प्रशासक के साथ साथ रहे और वह प्रशासक जीवन भर उन्हें उनके शत्रुओं से छुटकारा दिलाया करता था। इसलिए कि यहावे उनके शत्रुओं द्वारा उन पर की जा रही ताड़ना से हुई पीड़ा की कराहट के कारण करुणा से दुखी हो जाते थे। मगर होता यह था कि जब उस प्रशासक की मृत्यु होती थी, वे पराए देवताओं का अनुसरण करने के द्वारा, उनकी उपासना करने के द्वारा तथा उनके सामने झुककर नमन करने के द्वारा अपने पुरखों से कहीं अधिक बुराई करने में लौट जाते थे। ना तो उन्होंने अपने इन बुरे कामों को छोड़ा, ना ही अपने हठीले स्वभाव को। इस पर इसराइल के विरुद्ध यहावे का क्रोध भड़क उठा। यहावे ने विचार किया, इसलिए कि इस देश ने मेरी उस वाचा का उल्लंघन किया है जिसकी आज्ञा मैंने उनके पुरखों को दी थी, उन्होंने मेरे आदेश का भी उल्लंघन किया है। मैं उन जनताओं को भी उनके सामने से नहीं निकालूंगा जिन्हें यहोशू अपनी मृत्यु के पहले छोड़ गए थे। मैं उन देशों के द्वारा इसराइल को परखू की वे अपने पुरखों के समान यहावे के आदेशों का पालन करते हैं या नहीं। इस कारण यहावे ने ही उन जनताओं को वहां रहने दिया तथा उन्हें वहां से जल्द ही नहीं निकाला। यहावे ने इन्हें यहोशू के अधीन भी ना होने दिया था। प्रशासक अध्याय 3। उन जनताओं को यहावे ने नहीं हटाया कि यहावे इनके द्वारा इसराइल की नई पीढ़ी को जो कनान के किसी भी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे परख सके और उन्हें युद्ध की कला में शिक्षित किया जा सके जिन्हें इसके पहले युद्ध का कोई अनुभव ना हो सका था। वे जनता ये थे, फिलिस्तीनी जिनका शासन 5 नगरों में बंटकर हो रहा था, बाल हरमोन पर्वत से लेकर लबो हामात तक, लबानोन पर्वत पर रह रहे सभी कनानी, सीदोनी तथा हिव्वी, ये सभी इसराइल को परखने के लिए रखे गए थे कि वे यहावे के आदेशों जो उनके पुरखों को यहावे ने मोशे के द्वारा दिए थे उनका पालन करते हैं या नहीं। इसराइल के वंशज कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिव्वी तथा यबूसियों के बीच रहते थे। वे उनकी बेटियों को अपनी पत्नी बनाने के लिए ले लेते थे तथा अपनी बेटियों को उनके बेटों को दे दिया करते थे तथा उनके देवताओं की सेवा उपासना भी करते थे। ओथनियल। इसराइल वंशजों ने वह किया जो यहावे की नजर में बुरा था। उन्होंने यहावे अपने परमेश्वर को भुलाकर बाल तथा अशेरा की सेवा उपासना करना शुरू कर दिया। यहावे का क्रोध इसराइल के विरुद्ध भड़क उठा। इस कारण यहावे ने उन्हें मेसोपोतामिया के राजा कूशन रिशाथाइम के हाथों में बेच दिया। इसराइल वंशज 8 साल कूशन रिशाथाइम के दास्तव में रहे। पहले प्रशासक द्वारा इसराइल का छुटकारा। मगर जब इसराइल वंशजों ने यहावे की दोहाई दी, यहावे ने इसराइल वंशजों के लिए एक छुड़ाने वाले का उदय किया कि वह इसराइल वंशजों को छुड़ाए, कालेब के छोटे भाई केनज के पुत्र ओथनियल को। यहावे का आत्मा उस पर उतरा और उसने इसराइल पर शासन किया। जब वह युद्ध के लिए आगे बढ़ा, यहावे ने मेसोपोतामिया के राजा कूशान रिशाथाइम को उसके अधीन कर दिया। फलस्वरूप कूशन रिशाथाइम ओथनियल के अधीन हो गया। इसके बाद देश में 40 सालों तक शांति बनी रही। फिर केनज के पुत्र ओथनियल की मृत्यु हो गई। एहूद। एक बार फिर इसराइल के वंशजों ने वह किया जो यहावे की नज़र में गलत था। इस कारण यहावे ने इसराइल के विरुद्ध मोआब के राजा एग्लोन की शक्ति बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने वह किया था जो यहावे की नज़र में गलत था। एग्लोन ने अम्मोन के वंशजों तथा अमालेक के वंशजों से मित्रता कर ली। उसने हमला कर इसराइल को हरा दिया तथा खजूर वृक्षों के नगर को अपने वश में कर लिया। इसराइल के वंशज 18 वर्ष मोआब के राजा एग्लोन के दास्तव में रहे। तब इसराइल के वंशजों ने यहावे की दोहाई दी और यहावे ने उनके लिए एक छुड़ाने वाले का उदय किया, बिन्यामीन के वंशज गेरा का पुत्र एहूद का। वह बाएं हाथ से काम करता था। इसराइलियों ने उसी के द्वारा मोआब के राजा एग्लोन को कर की राशि भेज दी। एहूद ने अपने लिए दोधारी तलवार बना रखी थी जिसकी लंबाई लगभग आधा मीटर थी। इसे उसने अपने बाहरी वस्त्र के भीतर दाईं जांग पर बांध रखा था। उसने मोआब के राजा एग्लोन को कर राशि भेंट की। एग्लोन बहुत ही मोटा व्यक्ति था। जब एहूद उसे कर राशि भेंट कर चुका, उसने उन सभी व्यक्तियों को भेज दिया जो उसके साथ आए थे। एहूद स्वयं गिलगाल की मूर्तियों के पास पहुंचने के बाद वहां से लौट आया और राजा को कहा, महाराज, मुझे आपको एक गुप्त संदेश देना है। राजा ने आदेश दिया, शांति। तब सभी सेवक कमरे से बाहर चले गए। एहूद राजा के निकट गया। राजा इस समय छत पर बने अपने ठंडे कमरे में अकेला बैठा हुआ था। एहूद ने राजा से कहा, मुझे परमेश्वर की ओर से आपके लिए भेजा हुआ एक संदेश देना है। सो राजा अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। एहूद ने अपने बाएं हाथ से दाईं जांग पर बंधी हुई तलवार निकाली और राजा के पेट में भोंक दी। फलक के साथ मुठिया भी भीतर चली गई और चर्बी ने फलक को ढक लिया। एहूद ने एग्लोन के पेट से तलवार बाहर नहीं निकाली, पेट में से मल बाहर निकल आया। एहूद बाहर बरामदा में चला गया। उसने अपने छत के कमरे के दरवाजे बंद कर दिए और ताला लगा दिया। जब वह जा चुका, राजा के सेवक आए और उन्होंने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उन्होंने सोचा महाराज ठंडे कमरे में आराम कर रहे होंगे। वे लोग इतनी देर तक इंतजार करते करते व्याकुल हो गए। फिर भी जब छत के कमरे का दरवाजा ना खुला, उन्होंने चाबी लेकर दरवाजा खोला तो देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा हुआ था। यहां जब वे इंतजार कर रहे थे, एहूद निकल भागा। वह मूर्तियों के पास से निकलकर सैरा जा पहुंचा। वहां उसने एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश में तुरी फूका। इसराइल के वंशज पहाड़ी इलाके से उसका पीछा करते हुए नीचे आए और वह उनका अगुआ बन गया। उसने घोषणा की, मेरे पीछे चले आओ, क्योंकि यहावे ने तुम्हारे शत्रु मोआबियों को तुम्हारे अधीन कर दिया है। सो वे उसके साथ गए और जाकर यर्दन के घाटों को जो मोआब के परे थे अपने अधीन कर लिया और किसी को भी पार जाने ना दिया। उस समय उन्होंने लगभग 10,000 मोआबियों को मार डाला। ये सभी हष्टपुष्ट पुरुष थे, इनमें से एक भी बचकर निकल ना सका। इस प्रकार उस दिन इसराइल ने मोआब को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद देश में 80 साल तक शांति बनी रही। शमगर। एहूद के बाद अनात के पुत्र शमगर ने बैलों को हांकने की छड़ी का प्रयोग कर 600 फिलिस्तीनियों को मार डाला और इस प्रकार उसने भी इसराइल को छुटकारा दिलाया। प्रशासक अध्याय 4। दबोरा तथा बाराक। एहूद की मृत्यु के बाद एक बार फिर इसराइल वंशजों ने वह किया जो यहावे की नजर में गलत था। यहावे ने उन्हें कनान के राजा याबीन के हाथों में बेच दिया। वह हाजोर में शासन करता था। उसकी सेना का सेनापति सीसरा था जो हरोशेत हग्गोयीम में रहता था। उसकी सेना में 900 लोहे के रथ थे। उसने 20 साल तक इसराइल वंशजों को बहुत ही निर्दयता से सताया। तब इसराइल वंशजों ने यहावे से सहायता की गुहार लगाई। इस समय लपीदोत की पत्नी दबोरा, जो भविष्यद्वक्तिन थी, इसराइल पर शासन कर रही थी। वह एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश में रामा और बेथेल के बीच एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठा करती थी। इसराइल वंशज न्याय पाने के लिए उसी के पास आया करते थे। उसने नफ्ताली के केदेश से अभिनोम के पुत्र बाराक को बुलवाया और उससे कहा, सुनो, यहावे इसराइल के परमेश्वर का आदेश यह है, ताबोर पर्वत पर नफ्ताली वंशजों में से तथा जेबुलून वंशजों में से 10,000 व्यक्तियों को इकट्ठा करो। मैं तुम्हारे सामने याबीन की सेना के सेनापति सीसरा को उसके रथों और उसकी सेना समेत कीशोन नदी पर ले आऊंगा और उसे तुम्हारे अधीन कर दूंगा। बाराक ने उसे उत्तर दिया, यदि आप मेरे साथ चलेंगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। दबोरा ने उसे उत्तर दिया, मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन याद रहे तुम जिस अभियान पर जा रहे हो उसका श्रेय तुम्हें ना मिलेगा, क्योंकि उस स्थिति में यहावे सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देंगे। इस प्रकार दबोरा ने बाराक के साथ केदेश के लिए कूच किया। बाराक ने केदेश के लिए जेबुलून और नफ्ताली के लोगों को बुला लिया, 10,000 पुरुष सैनिक उसके साथ हो लिए, दबोरा भी उनके साथ गई। इस समय केनी हेबोर केनियों से अलग हो गया था, ये मोशे के ससुर होबाब के वंशज थे। एबेल ने अपनी छावनी सानानीम के बांज पेड़ के पास डाल रखी थी, यह स्थान केदेश के पास है। जब सीसरा को सूचना दी गई कि अभिनोआम का पुत्र बाराक ताबोर पर्वत पर पहुंच गया है, उसने हरोशेत हगोयेम से लेकर कीशोन नदी तक अपने 900 लोहे के रथों और सभी सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। दबोरा ने बाराक को आदेश दिया, उठो, आज ही वह दिन है जिसमें यहावे ने सीसरा को तुम्हारे अधीन कर दिया है। देख लो, यहावे तुम्हारे आगे जा चुके हैं। तब बाराक 10,000 लोगों को लेकर ताबोर पर्वत से नीचे उतर गया। यहावे ने बाराक की तलवार की धार से सीसरा, उसके सभी रथ तथा उसकी पूरी सेना को हरा दिया। सीसरा अपने रथ से उतर गया और पैदल ही भाग गया। बाराक ने हरोशेत हगोयेम तक रथों और सेना का पीछा किया। सीसरा की पूरी सेना तलवार का कोर हो गई, एक भी सैनिक ना बच पाया। सीसरा पैदल ही भागते हुए केनी हेबेर की पत्नी याएल की छावनी में जा पहुंचा, क्योंकि हाजोर के राजा याबीन तथा केनी हेबेर के परिवारों के बीच शांति की वाचा थी। याएल सीसरा से भेंट करने आई और उससे कहा, मेरे स्वामी मेरे निकट आइए, मेरे निकट आइए, डरिए मत। सीसरा उसकी छावनी के अंदर चला गया। याएल ने उसे एक कंबल ओढ़ा दिया। सीसरा ने उससे विनती की, कृपा कर मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दो, मैं प्यासा हूं। उसने उसे दूध का बर्तन खोलकर उसे पीने दिया, दोबारा कंबल ओढ़ा दिया। सीसरा ने याएल से कहा, तंबू के दरवाजे पर खड़ी रहना, यदि कोई तुमसे पूछे अंदर कोई है तुम कह देना नहीं। मगर हेबेर की पत्नी ने छावनी की एक खूंटी और एक हथौड़ी उठाई और चुपके से जाकर वह खूंटी उसकी कनपटी में ठोक दी। खूंटी उसके सिर से पार निकलकर जमीन में धस गई और उसकी मृत्यु हो गई। वह बहुत ही थककर गहरी नींद में सोया हुआ था। जब बाराक सीसरा का पीछा करता हुआ वहां आया, याएल उससे भेंट करने तंबू के बाहर निकल आई और उससे कहा, यहां आइए, मैं आपको वह आदमी दिखाऊंगी जिसे आप ढूंढ रहे हैं। बाराक उसके साथ अंदर गया और देखा कि सीसरा वहां मरा पड़ा हुआ था और तंबू की खूंटी उसकी कनपटी में धसी हुई थी। उसी दिन परमेश्वर ने कनान के राजा याबीन को इसराइलियों के सामने हरा दिया। इसके बाद इसराइली कनान के राजा याबीन पर लगातार सामर्थी ही होते चले गए और अंत में उन्होंने कनान के राजा याबीन को खत्म ही कर दिया। प्रशासक अध्याय 5। दबोरा का गीत। उस दिन दबोरा तथा अभिनोम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया, धन्य है यहावे, जब इसराइल में अगुओं ने अगुवाई की, जब प्रजा अपनी इच्छा के अनुसार तैयार हो गई। सुन लो राजाओं, ध्यान दो शासकों, मेरा गीत यहावे को समर्पित है। मैं यहावे इसराइल के परमेश्वर की स्तुति गाऊंगी। यहावे, जब आप सेईर से बाहर निकले, जब आपने एदोम क्षेत्र से चलना शुरू किया, पृथ्वी कांप उठी, आकाश टूट पड़ा, यहां तक कि बादलों से बारिश शुरू हो गई। यहावे के सामने पहाड़ हिल गए, यहाँ तक कि सीनाई पहाड़ भी यहावे इसराइल के परमेश्वर के सामने अनात के पुत्र शमगर के दिनों में याइल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थी। यात्रियों ने दूसरे मार्ग अपना लिए थे। इसराइल देश में अब ग्रामीण नहीं बचे थे। जब तक मैं दबोरा ने शासन ना संभाला था, जब तक मैं इसराइल के लिए एक माँ के समान उभर ना आई, नए देवता चुने गए, दरवाजों के अंदर ही युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में ना ढाल थी ना बरछी, जबकि इसराइल में 40,000 सैनिक थे। मेरा हृदय इसराइल के सेनापतियों के पक्ष में है, जिन्होंने अपने आप को अपनी इच्छा से युद्ध सेवा भेंट दी। धन्य है यहावे, तुम जो सफ़ेद गधों पर यात्रा करते हो, तुम जो आलीशान गलीचों पर बैठा करते हो, और तुम जो पैदल हो, गाओ। पनघटों के बीच में पानी भरने वाली स्त्रियों की जो आवाज आ रही है, उस पर ध्यान दो। वहां वे यहावे की नीतियुक्त कामों का वर्णन करेंगे, इसराइल में अपने ग्रामीणों के लिए किए गए महान कार्य। तब यहावे के लोग पाटकों की ओर चले गए। जागो दबोरा, जागो जागो जागो, तुम्हारे मुख से गीत फूट पड़े। उठो बाराक, तुम बंदियों को आगे ले जाओ। अबिनोअम के पुत्र, तब वे जो जीवित रह गए थे अधिकारियों से मिलने आए। यहावे के लोग योद्धा के समान मेरे पास आए। एफ्राइम से वे लोग नीचे उतर आए जिनका मूल अमालेक में है। ओ बिन्यामीन, तुम्हारे लोगों के साथ तुम्हारा अनुगमन करते हुए माखीर से सेनापति नीचे उतर आए। जेबुलून से वे आए जो अपने झंडे लिए हुए थे। इसखार के शासक दबोरा के साथ थे। इसखार बाराक के प्रति ईमानदार बना रहा। रियूबेन की टुकड़ियों के बीच में हृदय के पक्के इरादे पाए गए। घाटी में वे उसके पीछे लपक पड़े, चरवाहों द्वारा भेड़ों के लिए किए जा रहे बांसुरी के गीत को सुनते हुए तुम भेड़शालों में ही क्यों ठहरे रहे। रियूबेन की टुकड़ियों के बीच में बारीकी से हृदय की था ली गई। गिलाद यर्दन के पार ही ठहरा रहा, क्या कारण था कि दान जहाजों में भी ठहरा रहा। आशेर सागर के किनारे पर बैठा देखा गया, और वह समुद्र के किनारे ही ठहरा रहा। जेबुलून वंशजों ने अपने प्राणों की चिंता ना की, नफ्ताली मैदान के टीलों पर ठहरा रहा। राजा आए, उन्होंने युद्ध किया, तब तानाक में मगीदो जलाशय के पास कनान के राजाओं ने युद्ध किया, पर वे इसराइल के लोगों की कोई चांदी ना ले जा सके। तारों ने आकाश से युद्ध किया, अपनी अपनी कक्षाओं से उन्होंने सीसरा से युद्ध किया। कीशोन की धारा उन्हें बहा ले गई, पुराने समय से चली आ रही नदी की धारा, कीशोन की धारा। मेरे प्राण, दृढ़ निश्चय कर आगे बढ़ो। तब घोड़े की टाप सुने गए, उनके शूरवीर घोड़ों के टाप। यहावे के दूत ने आदेश दिया, मेरोज को शाप दो, इसके निवासियों को शाप दो, क्योंकि वे यहावे की सहायता के लिए नहीं आए, योद्धाओं के विरुद्ध यहावे की सहायता के लिए। स्त्रियों में परम धन्य है याइल, केनी हेबेर की पत्नी, शिविर में रहने वाली स्त्रियों में सबसे ज्यादा स्तुति के योग्य। सीसरा ने विनती तो जल की थी, किंतु उसने उसे दूध दे दिया। एक राजसी आलीशान कटोरे में उसने उसको दही दे दिया। उसने एक हाथ में तंबू की खूंटी उठाई और दाएं हाथ में मजदूर का हथौड़ा। उसने सीसरा का सिर कुचल डाला, उसने उसकी कनपटी को तोड़ते हुए छेद डाला। वह उसके पैरों के बीच झुका, वह गिरा जहां वह झुक गया था, वह वहीं मरा पड़ा रहा। सीसरा की माँ खिड़की में से झांकती हुई रो रही थी, सीसरा के रथ के लौटने में देरी क्यों हो रही है, घोड़े की टापों में यह देरी क्यों, रथ लौट क्यों नहीं रहे। उसकी चतुर राजपुत्रियां उसे इसका उत्तर देंगी, वह मन ही मन अपना प्रश्न दोहराती रही। क्या उन्हें अब तक लूट का सामान नहीं मिला, क्या वे सामान का बंटवारा नहीं कर रहे। हर एक योद्धा के लिए एक या दो कन्याएं, सीसरा के लिए रंगे हुए वस्त्र, रंगे हुए तथा कसीदा किए हुए वस्त्र, उनके गले पर जो लूट में से दोहरी काशीदाकारी किए हुए वस्त्र। यहावे, आपके सभी शत्रु इसी प्रकार नष्ट हो, मगर आपके भक्त जो आपसे प्रेम रखते हैं, वह प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान हो। इसके बाद देश में 40 साल तक शांति बनी रही। प्रशासक अध्याय 6। गिदोन की बुलाहट। इज़राइल के वंशजों ने वह किया जो यहावे की नज़रों में गलत था। इस कारण यहावे ने उन्हें 7 सालों के लिए मिद्यानियों के वश में कर दिया। मिद्यान की ताकत इज़राइल पर प्रबल होती गई। इस कारण से मिद्यान के डर से इज़राइल के वंशजों ने पहाड़ों में मांदे, गुफाएं और गढ़ को अपने निवास बना लिए थे। जब इज़राइली बीज बोते थे, मिद्यानी अमालेकियों तथा पूर्वी देश के क्षेत्रों के लोगों के साथ मिलकर इज़राइलियों पर हमला कर करते थे। उनके विरुद्ध शिविर डालकर अज्जा तक उनकी उपज को नष्ट कर देते थे। इस कारण इज़राइल में ना तो भोजन सामग्री बची रहती थी, ना भेड़े, ना बैल, ना गधे। जब वे अपने पशुओं और छावनियों के साथ आते, वे टिड्डी दल के समान लगते थे। उनके ऊंट अनगिनत थे। देश में प्रवेश करते हुए उनका लक्ष्य सिर्फ विनाश ही हुआ करता था। मिद्यान के द्वारा इज़राइल की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। इस कारण सहायता के लिए इज़राइलियों ने यहावे की दोहाई दी। जब मिद्यानियों के कारण इज़राइलियों ने यहावे की दोहाई दी, यहावे ने इज़राइल के वंशजों के लिए एक भविष्यद्वक्ता भेजा, जिसने उनसे कहा, यह यहावे इज़राइल के परमेश्वर का संदेश है। मैं ही था जिसने मिस्र से दास्तव के घर से तुम्हें निकाला। मैंने मिस्रियों के अधिकार से तुम्हारे सभी अत्याचारियों के हाथ से तुम्हें छुड़ा लिया। उन्हें तुम्हारे सामने से दूर हटाकर तुम्हें उनका देश दे दिया। मैंने तुम्हें यह आश्वासन दिया, मैं यहावे तुम्हारा परमेश्वर हूँ। जिन अमोरियों के देश में तुम रह रहे हो, जरूरी नहीं कि तुम उनके देवताओं से डर जाओ, मगर तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। यहावे का दूत उस बांज वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया जो ओफरा में था। यह वृक्ष अबीएजरी योआश की संपत्ति थी। गिदोन इस समय मिद्यानियों से छिपाने के लिए अंगूर पेरने के कोलू में गेहूं को भूसी से अलग कर रहा था। यहावे के दूत ने गिदोन पर प्रकट होकर उसका अभिवादन किया, वीर योद्धा, यहावे तुम्हारे पक्ष में है। गिदोन ने उससे कहा, माफ कीजिए मेरे स्वामी, यदि यहावे हमारे पक्ष में है तो हमारे साथ यह सब क्यों हो रहा है? कहाँ गए वे सभी अद्भुत काम जिनका वर्णन हमारे पूर्वजों ने हमसे किया था? वे कहते थे, क्या वह यहावे ही ना थे जिन्होंने हमें मिस्र देश से निकाल लिया है? किंतु अब तो यहावे ने हमें छोड़ दिया है और हमें मिद्यानियों के हाथों में सौंप दिया है। तब यहावे ने गिदोन से कहा, अपनी इसी शक्ति में जाकर मिद्यानियों के अधिकार से इज़राइलियों को छुड़ाओ। तुम्हारे लिए यह मेरा आदेश है, मैं हूं तुम्हें भेजने वाला। गिदोन ने यहावे को उत्तर दिया, माफ कीजिए मेरे प्रभु, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ा सकता हूँ? आप ही देखिए, मेरा परिवार मनश्शे गोत्र में सबसे छोटा माना जाता है तथा इसके अलावा अपने पिता के परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ। जवाब में यहावे ने कहा, मगर मैं जो तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम सारी मिद्यानी सेना को ऐसे हरा दोगे जैसे सिर्फ एक व्यक्ति को। गिदोन ने यहावे से कहा, यदि आप मुझसे संतुष्ट हुए हैं तो मुझे एक चिन्ह दिखाकर साबित कर दीजिए कि आप वही हैं जो आप कह रहे हैं कि आप हैं। कृपया मेरे लौटने तक आप यहीं ठहरिए कि मैं आपको अपनी भेंट चढ़ा सकूं। उसने कहा, तुम्हारे लौटने तक मैं यहीं ठहरूंगा। गिदोन गया और उसने एक ऐफा आटे की अखमीरी रोटियां और एक मेमने के मांस का व्यंजन तैयार कर एक टोकरी में रखा और एक बर्तन में रसा लेकर बांज वृक्ष के नीचे गया और वहां इन्हें स्वर्गदूत के सामने परोस दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, अखमीरी रोटी तथा मांस के व्यंजन को चट्टान पर सजा दो और रसा इनके ऊपर डाल दो। गिदोन ने ऐसा ही किया। तब स्वर्गदूत ने अपने हाथ की छड़ी को आगे बढ़ाकर अखमीरी रोटी व मांस के व्यंजन को छुआ। चट्टान से आग निकली और अखमीरी रोटी व मांस को चट कर गई। इसके बाद यहावे का दूत उसकी नजरों से गायब हो गया। जब गिदोन को यह एहसास हुआ कि वह यहावे का दूत ही था, वह कह उठा, आए यहावे परमेश्वर, मैंने तो यहावे के दूत को आमने सामने देख लिया है। यहावे ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, भयभीत ना हो, तुम्हारा भला होगा। इस कारण गिदोन ने वहां यहावे के लिए एक वेदी बनाई तथा उसे नाम दिया यहावे शालोम है। आज तक यह वेदी अबीएजरियों के ओफ्रा में बनी हुई है। उसी रात यहावे ने गिदोन से कहा, अपने पिता का दूसरा बैल जो 7 वर्ष का है उसे लेकर जाओ, अपने पिता के बाल की वेदी गिरा दो तथा उसने निकट खड़े अशेरा को गिरा दो। फिर यहावे अपने परमेश्वर के लिए इसी गढ़ के ऊपर अच्छी सी वेदी को बनाओ, इसके बाद उस बैल की होमबलि चढ़ाओ और उसके लिए अशेरा खंभे की लकड़ी का इस्तेमाल करना, जिसे तुम पहले ही काट चुके होगे। सो गिदोन अपने 7-10 सेवकों को लेकर वहां गया और वही किया जैसा यहावे ने आदेश दिया था। अपने पिता के परिवार तथा नगरवासियों के भय से उसने यह रात के समय किया। बड़े तड़के जब नगरवासियों ने देखा कि बाल की वेदी गिर पड़ी थी, उसके निकट स्थापित की हुई अशेरा काट डाली गई थी तथा निर्माण की हुई वेदी पर वह बैल को चढ़ाया गया था, वे आपस में सोचने विचारने लगे, किसने किया है यह? उनकी खोज तथा पूछताछ के फल स्वरूप उन्हें सूचित किया गया, यह योआश के पुत्र गिदोन ने किया है। फिर नगरवासियों ने योआश को आदेश दिया, बाहर लाओ अपने पुत्र को कि उसे मृत्युदंड दिया जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी गिरा दी तथा उसके पास की अशेरा को काट डाला है। किंतु योआश ने अपने उन सभी विरोधियों से कहा, आपका उद्देश्य बाल के लिए विरोध करना है या उसे सुरक्षा प्रदान करना? जो कोई बाल का विरोध करेगा सुबह तक उसका वध कर दिया जाएगा। यदि बाल वास्तव में देवता है, वह स्वयं अपने बारे में बोलेगा, क्योंकि किसी ने उसकी वेदी गिरा दी है। सो उस दिन योआश ने गिदोन को यरूबाल नाम दे दिया, जिसका मतलब है बाल ही उसका विरोध करे, क्योंकि गिदोन ने बाल की वेदी गिरा दी थी। कुछ समय बाद सभी मिद्यानी, अमालेक तथा पूर्वी देशों के लोग एकजुट हो गए। यर्दन पार कर उन्होंने येजरील घाटी में शिविर खड़े कर दिए। यहावे का आत्मा गिदोन पर उतरा, गिदोन ने तुरी फूकी और उसने अपने पीछे चलने के लिए अबीएजरियों को बुलाया। उसने मनश्शे गोत्र के सारे प्रदेश में दूत भेजे और पीछे चलने के लिए उनको भी बुलाया। उसने आशेर, जेबुलून तथा नफ्ताली के गोत्रों में भी दूत भेज दिए, वे उससे भेंट करने आ गए। गिदोन ने परमेश्वर से विनती की, यदि आप मेरे द्वारा इसराइल को छुड़वा रहे हैं जैसा कि आपने ही कहा है, देखिए मैं खलिहान में ऊन की कतरन छोड़ दूंगा, यदि ओस ऊन की कतरन पर ही पाई जाएगी और सारी भूमि सूखी, तो मैं इससे समझ लूंगा कि आप अपने वचन के अनुसार मेरे द्वारा इसराइल को छुड़ाएंगे। ऐसा ही पाया गया। जब गिदोन ने अगले दिन उसे निचोड़ा, उसने इसमें से एक कटोरा भर जल इकट्ठा कर लिया। इसके बाद गिदोन ने परमेश्वर से विनती की, कृपया मुझ पर क्रोध ना करें, मैं एक बार और विनती करना चाहूंगा। इस बार ऊन की कतरन सूखी बनी रहे तथा सारी भूमि पर ओस पाई जाए। परमेश्वर ने उस रात वैसा ही किया, केवल ऊन की कतरन सूखी रही मगर सारी भूमि ओस से भीगी हुई थी। प्रशासक अध्याय 7। गिदोन द्वारा मिद्यानी हरा जाता है। तब यरूबाल अर्थात गिदोन तथा उसके साथ के सारे योद्धा तड़के उठे और उन्होंने हरोद के सोते के पास पड़ाव डाल दिए। मिद्यानी उनके उत्तर में घाटी की मोरे पहाड़ी पर पड़ाव डाले हुए थे। यहावे ने गिदोन से कहा, मिद्यानी को तुम्हारे वश में कर देने के उद्देश्य से तुम्हारे साथ के इन लोगों की संख्या बहुत अधिक है, ऐसा ना हो इसराइल अहंकार में यह डींग मारने लगे, अपनी ही शक्ति से हमने छुटकारा प्राप्त किया है। इस कारण अब मेरे पास आओ, लोगों को घोषणा करके यह सुना दो, जो कोई डरा हुआ है और डर से कांप रहा है वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। इस घोषणा पर 22,000 लोग लौटकर चले गए, बचे रह गए 10,000। यहावे ने गिदोन से कहा, अब भी गिनती में ये लोग बहुत ज्यादा है, उन्हें जल के पास ले जाओ कि मैं उन्हें वहां तुम्हारे लिए परख सकूं। मैं जिस किसी के विषय में कहूंगा यह जाएगा तुम्हारे साथ, वही तुम्हारे साथ जाएगा, किंतु जिस किसी के विषय में मैं यह कहूं यह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इस प्रकार गिदोन उस सब को जल के निकट ले आया। यहावे ने गिदोन को आदेश दिया, तुम उन्हें जो कुत्ते के समान जीभ से जल पिएंगे उनसे अलग कर लेना, जो घुटने टेक कर जल पिएंगे। उन व्यक्तियों की गिनती जिन्होंने चुल्लू में जल लेकर जीभ की सहायता से जल पिया था 300 हुई, मगर बचे हुए वे थे जिन्होंने घुटने टेक कर जल पिया था। यहावे ने गिदोन से कहा, मैं इन्हीं 300 व्यक्तियों के द्वारा तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा जिन्होंने चुल्लू में जल लेकर जीभ की सहायता से पिया था। मैं मिद्यानियों को तुम्हारे अधीन कर दूंगा, इसलिए अब इन बचे हुओं को लौट जाने दो। इन लोगों ने अपने भोजन सामग्री और अपने नरसिंगे उठा लिए। बाकियों को गिदोन ने विदा कर दिया और इसराइली अपने अपने घर को लौट गए, मगर इन 300 को उसने अपने साथ रखा। मिद्यानियों का पड़ाव नीचे घाटी में था। उसी रात यहावे ने गिदोन को आदेश दिया, उठो जाकर पड़ाव पर हमला कर दो, क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे अधीन कर दिया है। हाँ, यदि तुम्हें वहां जाने में डर लग रहा है तो अपने सेवक पूरा को लेकर वहां पड़ाव को जाओ। वहां जाकर सुनो कि वे क्या क्या बातें कर रहे हैं। इससे तुम्हें हौसला मिलेगा कि तुम पड़ाव पर हमला कर सको। सो गिदोन अपने सेवक पूरा को लेकर सेना के पड़ाव की सीमा चौकी पर जा पहुंचा। इस समय मिद्यानी, अमालेक तथा पूर्वी देशों से आए हुए सैनिक घाटी में अपनी अपनी छावनियों में लेटे हुए थे। वे टिड्डी दल के समान अनगिनत थे, उनके ऊंट भी अनगिनत थे जैसे सागर किनारे की रेत। जब गिदोन सीमा चौकी पर पहुंचा, एक सैनिक अपने मित्र से अपने स्वप्न के बारे में बता रहा था। वह कह रहा था, सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा है। ज्यों की एक रोटी लुढ़कती हुई आई और मिद्यानी पड़ाव में प्रवेश कर गई, एक तंबू तक पहुंचकर उसने उस पर ऐसा हमला किया कि वह तंबू भूमि पर बिछ गया। उसके मित्र ने उत्तर में कहा, इसराइली योआश के पुत्र गिदोन की तलवार के अलावा यह और कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर ने मिद्यान तथा उसकी पूरी छावनी को उसके वश में कर दिया है। जब गिदोन ने इस स्वप्न तथा इसके फल के बारे में सुना, वह परमेश्वर की स्तुति में वहीं दंडवत हो गया। वह इसराइली छावनी को लौट गया और वहां यह घोषणा कर दी, उठो उठो, यहावे ने मिद्यानी पड़ाव को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब गिदोन ने उन 300 को 3 दलों में बांटकर उन सभी के हाथों में नरसिंगे और खाली मटकियां दे दी जिनमें मशाले रखी हुई थी। उसने उन्हें आदेश दिया, मेरी ओर देखते रहना तथा वैसा ही करते जाना जैसा जैसा मैं करूंगा, और सुनो, जब मैं उनकी छावनी के पास पहुंचूंगा तो जो मैं करूंगा वही तुम भी करना। जब मैं और मेरे साथी नरसिंगा फूके तब तुम भी पूरी छावनी के आसपास नरसिंगा फूकते हुए नारा लगाना, यहावे के लिए और गिदोन के लिए। इस कारण आधी रात को जब उन्होंने पहरेदार चुने, गिदोन और उसके साथ के 100 व्यक्ति छावनी के पास पहुंच गए। उन्होंने नरसिंगे फूके और अपने हाथों की मटकियों को फोड़ डाला। जब तीनों दलों ने नरसिंगे फूंकते हुए अपनी अपनी मटकियां फोड़ी, उन्होंने मशाले अपने बाएं हाथ में तथा नाद करने के लिए नरसिंगे दाएं हाथ में पकड़े थे। उन्होंने नारा लगाया, तलवार यहावे के लिए और गिदोन के लिए। हर एक व्यक्ति अपने अपने स्थान पर पड़ाव के आसपास घेरा बनाए हुए खड़ा था। पड़ाव के सभी लोग भागने लगे, वे सब भागते हुए चिल्लाते जा रहे थे। जब उन 300 ने नरसिंगे फूके, यहावे ने मिद्यानियों के हर एक सैनिक की तलवार उसके साथी पर चलवा दी। ऐसा सारी सेना में हो गया। सेना जेरेरा के बेतशित्ता तक भागती चली गई और आगे तब्बात के निकट आबेल मेहुला की सीमा तक। नफ्ताली, आशेर तथा मनशशे के गोत्र से इसराइलियों को बुलाया गया और उन्होंने भी मिद्यानियों का पीछा किया। गिदोन ने एफ्राइम के सारे पहाड़ी इलाके में यह संदेश लेकर अपने दूत भेज दिए, आकर मिद्यान पर आक्रमण करके उनसे बेत बारा तथा यर्दन तक के जलाशय छीन लो। इसलिए एफ्राइम से सभी पुरुष आ गए और उन्होंने बेत पाराबा तथा यर्दन तक के सारे जलाशयों पर अधिकार कर लिया। उन्होंने मिद्यान के दो हाकिमों ओरेब तथा जेब को पकड़ लिया। जब वे मिद्यानियों का पीछा कर रहे थे, ओरेब का वध ओरेब की चट्टान पर तथा जेब का वध जेब के दाख के कुंड पर कर दिया। उन्होंने यर्दन पार से ओरेब तथा जेब के सिर लाकर गिदोन के सामने रख दिए। प्रशासक अध्याय 8। सेबा तथा जलमुन्ना। एफ्राइम वासियों ने गिदोन से कहा, आपने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? आपने मिद्यानियों से युद्ध के लिए अपने साथ चलने के लिए हमें आमंत्रित ही नहीं किया। वे गुस्से में गिदोन से विवाद करते रहे, किंतु गिदोन ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोगों ने जो किया है उसकी तुलना में मेरा किया हुआ कुछ भी नहीं है। क्या यह सच नहीं कि भूमि पर से बीने गए एफ्राइम के अंगूर अबीएजर की लता से तोड़े गए अंगूरों से गुणों में कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं? परमेश्वर ने मिद्यान के शासक ओरेब तथा जेब को तुम्हें सौंप दिया है। आप लोगों की तुलना में मैंने किया ही किया है। इस पर गिदोन के विरुद्ध उनका क्रोध शांत हो गया। तब गिदोन तथा उसके साथ के 300 व्यक्ति यर्दन तट पर पहुंचे और उन्होंने यर्दन नदी पार की। वे पीछा करते हुए बहुत ही थक चुके थे। सुक्खोत वासियों से गिदोन ने विनती की, मेरे साथ आ रहे इन व्यक्तियों को कृपा कर रोटी दे दीजिए, वे बहुत ही थक चुके हैं, क्योंकि मैं मिद्यानियों के राजाओं सेबा तथा जलमुन्ना का अभी भी पीछा कर रहा हूं। सुक्कोत के शासकों ने उत्तर में कहा, क्या जेबा तथा जलमुन्ना को तुम वश में कर चुके हो तो हम तुम्हारी सेना को रोटी दें। ठीक है, गिदोन ने उनसे कहा, जब यहावे जेबा तथा जलमुन्ना को मेरे वश कर देंगे तब मैं तुम्हारे शरीरों को जंगली कटीली झाड़ियों तथा कांटों में रौंद दूंगा। वहां से वह पनियेल पहुंचा और उनसे भी यही विनती की। पनियेल निवासियों का भी ठीक वही उत्तर था जो सुक्खोत वासियों का। इस कारण गिदोन ने पनियेल निवासियों से कहा, जब मैं यहां सुरक्षित लौटूंगा मैं इस खंभे को गिरा दूंगा। जेबा तथा जलमुन्ना अपनी सेनाओं के साथ कारकोर में थे। ये लगभग 15,000 सैनिक थे। ये सब वे थे जो पूर्वी देशों के वंशजों की पूरी सेना में से बच गए थे। युद्ध में मारे गए तलवारधारियों की गिनती 1,20,000 हो गई थी। गिदोन ने उनका मार्ग लिया जो नोभा तथा योग बेहा के पहले छावनी में रहते थे और उन पर उस समय हमला कर दिया जिस समय की उन्होंने उम्मीद ही ना की थी। जब जेबा तथा जलमुन्ना भागे, गिदोन ने उनका पीछा किया और मिद्यान के उन दो राजाओं जेबा तथा जलमुन्ना को जा पकड़ा। इससे सारी सेना तितर बितर हुई। योआश का पुत्र गिदोन युद्ध के बाद हेरेस की चढ़ाई से होता हुआ लौटा। उसने सुक्कोत के एक युवक को पकड़ा और उससे पूछताछ की। उस युवक ने उसे सुक्कोत के शासकों तथा पूर्णियों कुल 70 व्यक्तियों के नाम लिख दिए। फिर उधर पहुंचकर सुक्कोत वासियों से गिदोन ने कहा, इन्हें देखो, ये है जेबा और जलमुन्ना जिनके विषय में तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। क्या जेबा और जलमुन्ना तुम्हारे अधिकार में आ चुके हैं? गिदोन ने नगर के पूर्णियों को पकड़ा और निर्जन प्रदेश की कटीली झाड़ियां लेकर सुक्कोत के इन व्यक्तियों को उनके द्वारा किए गए गलत व्यवहार की अच्छी सजा दे डाली। पनियेल के खंभे को उसने गिरा दिया और नगरवासियों की हत्या कर डाली। तब उसने जेबा तथा जलमुन्ना से पूछा, तुमने जिन व्यक्तियों की हत्या ताबोर में की थी वे किस प्रकार के व्यक्ति थे? उन्होंने उत्तर दिया, आपके ही समान, हर एक का रूप राजकुमार के समान था। गिदोन ने उनसे कहा, वे मेरे भाई थे, मेरी माता की संतान, जीवित यहावे की शपथ, यदि तुमने उन्हें जीवित छोड़ा होता मैं तुम्हारा वध ना करता। गिदोन ने अपने बड़े बेटे येथेर को आदेश दिया, उठो इन्हें खत्म कर दो। किंतु उस युवक ने तलवार ही ना खींची क्योंकि वह कम उम्र का युवा था। यह देख जेबा तथा जलमुन्ना ने विनती की, आप खुद ही उठकर हम पर वार कीजिए। पुरुष जैसा होता है वैसा ही होता है उसका बल। सो गिदोन ने ही उठकर जेबा तथा जलमुन्ना का वध किया तथा उनके ऊँटों की गर्दनों से चंद्रहार गहने उतार लिए। गिदोन का एफोद। इसराइली प्रजा ने गिदोन से विनती की, आप हम पर शासन कीजिए, आप दोनों, आप और आपका पुत्र, क्योंकि आपने हमें मिद्यानियों से छुड़ाया है। मगर गिदोन ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोगों पर शासन ना तो मैं करूंगा और ना ही मेरा पुत्र, आप पर शासन स्वयं यहावे करेंगे। फिर भी गिदोन ने उनसे कहा, आप में से हर एक से मेरी एक विनती है, अपनी लूट की सामग्री से मुझे एक एक बाली दे दो। इश्माइली कानों में सोने की बालियां पहनते थे। इसराइलियों ने उससे कहा, ये हम आपको जरूर देंगे। इसके लिए उन्होंने कपड़ा बिछा दिया और हर एक व्यक्ति ने लूट में से एक एक बाली वहां डाल दी। जब इन सोने की बालियों को तोला गया तो इनका भार 20 किलो था। यह लूट में मिले चंद्रहारों, कुंडलों, मिद्यानी राजाओं द्वारा पहने जाने वाले बैंगनी वस्त्रों तथा ऊँटों के चंद्रहारों के अलावा था। इनसे गिदोन ने एक एफोद को बनाकर अपने नगर ओफरा में रख दिया। सारे इसराइल ने इसकी उपासना करने के द्वारा यहावे के प्रति व्यभिचार अर्थात विश्वासघात का पाप किया। यह एफोद गिदोन तथा उसके परिवार के लिए फंदा साबित हुआ। गिदोन की मृत्यु। मिद्यान इसराइल के वंशजों के वश में हो चुका था, इसके बाद उन्होंने सिर नहीं उठाया। गिदोन के जीवनकाल में 40 साल तक शांति बनी रही। तब योआश का पुत्र यरूबाल जाकर अपने ही घर में रहने लगा। गिदोन के 70 पुत्र थे, क्योंकि उनको अनेक पत्नियां थी। शेकेम में उनकी एक उपपत्नी से भी एक पुत्र था, उन्होंने उसका नाम अबीमेलेक रखा था। योआश के पुत्र गिदोन की मृत्यु पूरे बुढ़ापे में हुई। उसे अबीएज़रियों के ओफरा नगर में उसके पिता योआश की गुफा की कब्र में रखा गया। जैसे ही गिदोन का निधन हुआ, इसराइल वंशजों ने बाल की उपासना करने के द्वारा यहावे के प्रति व्यभिचार अर्थात विश्वासघात का पाप किया। उन्होंने बाल बेरीत को अपने देवता के रूप में मान लिया। ऐसा करने के द्वारा उन्होंने यहावे अपने परमेश्वर को भुला दिया, जिन्होंने उन्हें उनके चारों ओर के शत्रुओं से छुटकारा दिलाया था। यहां तक कि उन्होंने तो यरूबाल अर्थात गिदोन के परिवार के प्रति भी कृपा ना दिखाई, जबकि गिदोन ने इसराइल के प्रति अनेक उपकार किए थे। प्रशासक अध्याय 9। अबीमेलेक का षड्यंत्र। यरूबाल का पुत्र अबीमेलेक अपने मामाओं से भेंट करने शेकेम गया। वहां उसने अपने नाना के सारे घराने को इकट्ठा कर उनसे कहा, शेकेम के सारे अगुओं के सामने आप मुझे बताइए क्या बेहतर है, यरूबाल के 70 पुत्र आप पर शासन करे या सिर्फ एक व्यक्ति। आप लोग यह ना भूले कि मैं आपकी ही हड्डी और आपका ही मांस हूं। उसकी माता के भाइयों ने उसकी यह बात शेकेम के अगुओं के सामने दोहरा दी। वे अबीमेलेक का अनुसरण करने के लिए तैयार हो गए। उनका विचार था, वह हमारा ही संबंधी है। उन्होंने उसे बाल बेरीत के मंदिर में से चांदी के 70 सिक्के दे दी, जिनसे अबीमेलेक ने नीच और लुच्चे लोगों को अपने पीछे होने के उद्देश्य से भाड़े पर ले लिया। फिर वह ओफरा में अपने पिता के घर पर गया और वहां अपने भाइयों को, यरूबाल के 70 पुत्रों को एक ही चट्टान पर ले जाकर मार दिया। किंतु यरूबाल का छोटा पुत्र योथाम बचा रह गया, क्योंकि वह छिप गया था। सभी शेकेमवासी एव, सभी बेथमिलोवासी इकट्ठा हो गए तथा उन्होंने शेकेम में खंबे के बांझ वृक्ष के पास अबीमेलेक का राज अभिषेक कर दिया। जब योथाम को इसकी सूचना दी गई, वह गेरिजीम पर्वत शिखर पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने ऊंची आवाज में कहा, सुनो शेकेम के शासकों, कि परमेश्वर भी तुम्हारी सुने। वृक्षों ने अपने लिए राजा चुनने की योजना बनाई। उन्होंने जैतून वृक्ष से कहा, हम पर शासन करो। जैतून वृक्ष ने उत्तर में कहा, क्या मैं अपना वह अमूल्य तेल बनाना रोक दूं, जिसके द्वारा देवता तथा मनुष्य सम्मानित किए जाते हैं और अन्य वृक्षों के ऊपर जाकर लहराता रहूं। वृक्षों ने अंजीर वृक्ष से विनती की, आइए हम पर शासन कीजिए। मगर अंजीर वृक्ष ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैं अपनी मिठास और अच्छे फल उगाना छोड़ दूं और अन्य पेड़ों के ऊपर जाकर लहराता रहूं। तब वृक्षों ने अंगूर की बेल से विनती की, आइए हम पर शासन कीजिए। किंतु अंगूर की बेल ने उत्तर में कहा, क्या मैं अपना दाख मधु बनाना छोड़ दूं, जो देवताओं और मनुष्यों को आनंदित कर देती है और अन्य पेड़ों के ऊपर जाकर लहराती रहूं। अंत में सभी वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, आइए हम पर शासन कीजिए। झड़बेरी ने वृक्षों से उत्तर में कहा, यदि आप लोग सच में मेरा राज अभिषेक करना चाह रहे हैं तो आकर मेरी छाया में आसरा ले लीजिए, और अगर नहीं तो झड़बेरी से आग निकले और लबानोन के देवदार के पेड़ भस्म हो जाए। क्या आप लोगों ने सच्चे मन से अबीमेलेक को राजा बनाया है, तथा ऐसा करने के द्वारा आप लोगों ने यरूबाल एवं उसके परिवार का भला किया है? क्या आपने वही किया है जिसके लिए वह योग्य था? तुम्हारी भलाई के लिए मेरे पिता ने युद्ध किया, अपने प्राण खतरे में डाले, तथा आप लोगों को मिद्यानियों की अधीनता से छुड़ाया। किंतु आज आप लोगों ने मेरे पिता के परिवार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। आपने उस एक ही चट्टान पर उनके 70 पुत्रों का वध कर दिया, और आपने उनकी सेविका के पुत्र अबीमेलेक को शेकेम पर राजा बना दिया है, केवल इसलिए कि वह आपका संबंधी है। यदि आप लोगों ने आज यरूबाल तथा उनके परिवार के साथ निष्कपट भाव से सच्चाई में व्यवहार किया है, तो अबीमेलेक में ही आपका आनंद होता था, वह भी आप में ही प्रसन्न रहे। किंतु यदि नहीं, तो अबीमेलेक द्वारा आग भेजी जाए और शेकेम तथा बेत मिल्लो के लोग इसमें भस्म हो जाए, और शेकेम तथा बेत मिल्लो के अगुओं की ओर से आग निकलकर अबीमेलेक को भस्म कर दे। यह कहकर योथाम वहां से भाग निकला। वहां से वह बयर जा पहुंचा और अपने भाई अबीमेलेक के डर से वहीं रहने लगा। अबीमेलेक इज़राइल पर 3 साल तक शासन करता रहा। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक तथा शेकेम वासियों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। परिणाम स्वरूप शेकेम वासियों ने अबीमेलेक से विश्वासघात किया, इसलिए कि यरूबाल के 70 पुत्रों से की गई हिंसा का बदला लिया जा सके और उनके खून का दोष उनके भाई अबीमेलेक पर लगाया जा सके, जिसने उनकी हत्या की थी, तथा शेकेम के व्यक्तियों पर भी जिन्होंने उसे अपने भाइयों की हत्या के लिए उकसाया था। उसके लिए शेकेम के लोगों ने पहाड़ों की चोटियों पर अपने लोगों को घात में लगा दिए, जो वहां से निकलते हुए यात्रियों को लूट करते थे। इसकी सूचना अबीमेलेक को दे दी गई। एबेद का पुत्र गायल अपने संबंधियों के साथ शेकेम गया। वह शेकेम वासियों का विश्वास पात्र बन गया। उन्होंने अपने अंगूर के बगीचों में जाकर अंगूर इकट्ठे किए, अंगूर रौंदे और अपने देवता के मंदिर में उत्सव मनाया। वहां उन्होंने भोजन किया, पेपान किया और फिर अबीमेलेक को शाप भी दिया। तब एबेद के पुत्र गायल ने कहा, कौन होता है अबीमेलेक और कौन होता है शेकेम कि हम उनकी सेवा करें? क्या वह यरूबाल का पुत्र नहीं? क्या जबूल उसका सहायक नहीं? हाँ, शेकेम के पिता हामोर के साथियों की सेवा अवश्य करो, किंतु हम भला अबीमेलेक की सेवा क्यों करें? अच्छा होता कि ये लोग मेरे अधिकार में होते, तब मैं अबीमेलेक को ही हटा देता। तब उसने अबीमेलेक से कहा, अपनी सेना को बढ़ाकर मुझसे युद्ध के लिए आ जाओ। जब नगर अध्यक्ष जबूल ने एबेद के पुत्र गायल का यह बातें सुनी, वह क्रोध से भड़क गया। उसने तोरमा नगर को अबीमेलेक के पास अपने दूत भेजे। संदेश यह था, देखिए, एबेद का पुत्र गायल तथा उसके संबंधी शेकेम आ गए हैं। यहां वे नगर को आपके विरुद्ध उकसा रहे हैं। इस कारण आप अपनी सेना को लेकर रात में मैदान में घात लगा दीजिए। सूरज उगते ही आप नगर पर टूट पड़िए। जब गायल अपनी सेना के साथ आप पर हमला करेगा, आप उसके साथ वही कीजिए जो आपको सही लगे। अबीमेलेक तथा उसके साथ के सारे सैनिक रात में 4 दल बनाकर शेकेम के लिए घात लगाकर छिप गए। एबेद का पुत्र गायल जाकर नगर द्वार पर खड़ा हो गया। अबीमेलेक तथा उसके सैनिक घात से बाहर आए। यह देखकर गायल ने जबूल से कहा, देखो, लोग पहाड़ की चोटियों से नीचे आ रहे हैं। किंतु जबूल ने उसे उत्तर दिया, आपको तो पर्वतों की छाया ही सेना जैसी दिखाई दे रही है। गायल ने दोबारा बताया, देश के बीचों बीच से लोग नीचे आ रहे हैं, तथा शकुन शास्त्रियों का एक दल बांज वृक्ष के मार्ग से आ रहा है। इसे सुन जबूल ने उससे कहा, क्या हुआ आपकी उन डींगों का, जब आप कह रहे थे कौन है अबीमेलेक की हम उसकी सेवा करें? क्या ये वे ही लोग नहीं जिनसे आप घृणा करते रहे? अब जाइए और कीजिए उनसे युद्ध। गायल गया और शेकेम के पुरुषों की अगुवाई करके अबीमेलेक से युद्ध किया। अबीमेलेक ने गायल को खदेड़ दिया और गायल तथा सैनिक भागने लगे। नगर द्वार के सामने अनेक सैनिक जो भाग रहे थे वे घायल होकर मर गए। अबीमेलेक अरूमा में ही ठहरा रहा, किंतु जबूल ने गायल तथा उसके संबंधियों को भगा दिया कि वे शेकेम में ना रह सकें। दूसरे दिन शेकेम के नागरिक मैदान में निकल आए। इसकी सूचना अबीमेलेक को दे दी गई। तब उसने अपनी सेना को तीन भागों में बांट दिया और वे घात लगाकर बैठ गए। जब उसने देखा कि लोग नगर से बाहर आ रहे हैं, उसने उन पर आक्रमण कर उनको मार दिया। फिर अबीमेलेक तथा उसके सैनिक दौड़कर नगर फाटक पर जा पहुंचे। दूसरे दो दल दौड़ दौड़कर उनको मारते चले गए जो नगर से बाहर आ गए थे। अबीमेलेक दिन भर शेकेम से युद्ध करता रहा। उसने शेकेम पर अधिकार कर लिया और सभी नगरवासियों को मार दिया। उसने नगर को पूरी तरह से गिराकर नगर क्षेत्र में नमक बिखेर दिया। जब शेकेम के मीनार पर रहने वाले सभी अधिकारियों ने यह सब सुना, वे एल बरीथ मंदिर के भीतरी कमरे में इकट्ठे हो गए। अतः अबीमेलेक अपनी सेना के साथ जलमोन पर्वत पर चढ़ गया। वहां अबीमेलेक ने कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष की एक शाखा काटी, उसे अपने कंधे पर उठा लिया और अपने साथ के सैनिकों को आदेश दिया, जैसा तुमने मुझे करते देखा है तुम भी वैसा ही करो। सभी ने अपने लिए एक एक शाखा काटी और अबीमेलेक के पीछे पीछे चले गए। उन सब ने ये शाखाएं भीतरी कमरों में रख दी और उसमें आग लगा दी। वहां सभी अगुए इकट्ठे थे, इस कारण शेकेम के मीनार के कमरे में जो थे उन सभी अधिकारियों की मृत्यु हो गई। ये लगभग 1000 स्त्री पुरुष थे। इसके बाद अबीमेलेक तबेज नगर को गया, नगर की घेराबंदी की और उसे अपने वश में कर लिया। किंतु नगर के बीच में एक मजबूत मीनार था। नगर के बचे हुए सभी स्त्री पुरुषों ने एवं अगुओं ने भागकर उसी में सहारा लिया और दरवाजे बंद कर लिए और वे सब मीनार की छत पर चढ़ गए। अबीमेलेक ने आकर उस मीनार पर हमला किया। वह मीनार में आग लगाने के उद्देश्य से द्वार के पास आया ही था कि एक स्त्री ने चक्की का ऊपरी पार्ट अबीमेलेक के ऊपर गिरा दिया। इससे उसकी खोपड़ी कुचल गई। उसने तुरंत अपने युवा हथियार ढोने वाले को बुलाकर आदेश दिया, अपनी तलवार निकालो और आजाद करो मुझे इस स्थिति से, ताकि मेरे संबंध में यह ना कहा जाए एक स्त्री ने उसकी हत्या कर दी। सो उस युवा ने उसे तलवार से बेध दिया, उसकी मृत्यु हो गई। जब इसराइलियों ने देखा कि अबीमेलेक की मृत्यु हो गई है, वे सब अपने अपने घर लौट गए। इस प्रकार परमेश्वर ने अबीमेलेक से उस दुष्टता का बदला ले लिया जो उसने अपने 70 भाइयों की हत्या करने के द्वारा अपने पिता के विरुद्ध की थी। इसके अलावा परमेश्वर ने शेकेम निवासियों की सारी दुष्टता का भी बदला ले लिया और यरूबाल के पुत्र योथाम का शाप उनके सिर पर आ पड़ा। प्रशासक अध्याय 10। तोला। अबीमेलेक की मृत्यु के बाद इसाखार प्रदेश से दोदो के पोते उआ के पुत्र तोला का उदय इसराइल के छुड़ाने वाले के रूप में हुआ। वह एफ्राइम के पहाड़ी इलाके के शामीर नगर का निवासी था। उसने 23 वर्ष इसराइल पर शासन किया। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और शामीर में उसे गाड़ा गया। याइर। उसके बाद गिलादवासी याइर का उदय हुआ। उसने 22 वर्ष इसराइल पर शासन किया। उसके 30 पुत्र थे जो 30 गधों पर यात्रा करते थे। गिलाद प्रदेश में 30 नगर उनके अधिकार में थे जो आज तक हव्वोत याइर नाम से मशहूर है। याइर की मृत्यु होने पर उसे कामोन में गाड़ा गया। यिफ्था। इसराइल के वंशजों ने दोबारा वही किया जो यहावे की नजरों में गलत था। उन्होंने बाल तथा अश्तोरेत, आराम के, सीदोन के, मोआब के अम्मोन वंशजों के तथा फिलिस्तीनियों के देवताओं की सेवा उपासना करना शुरू कर दिया। उन्होंने यहावे को भुला दिया और उनकी सेवा वंदना का त्याग कर दिया। यहावे का क्रोध इज़राइल पर भड़क उठा। यहावे ने उन्हें फिलिस्तीनियों तथा अम्मोन वंशजों के हाथों में बेच दिया। उस पूरे साल वे इज़राइल वंशजों को सताते और पीसते रहे। वे गिलाद में यर्दन के पार बसे हुए इज़राइल के वंशजों को 18 वर्ष तक सताते रहे। अम्मोन वंशज यर्दन पार कर यहूदिया, बिन्यामीन प्रदेश तथा एफ्राइम वंशजों से भी युद्ध करते रहे। इससे इज़राइल वंशज बहुत ही संकट में पड़ गए थे। तब इज़राइल वंशजों ने यहावे की दोहाई दी, हमने आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने वास्तव में अपने परमेश्वर को छोड़कर बाल देवताओं की सेवा उपासना की है। यहावे ने इज़राइल संतानों को उत्तर दिया, क्या मैं ही वह ना था जिसने तुम्हें मिस्रियों, अमोरियों, अम्मोनियों तथा फिलिस्तीनियों की बंधुआई से, और जब सीदोनी, अमालेक तथा माउनी तुम्हें सता रहे थे, तुमने मेरी दोहाई दी, और क्या मैंने तुम्हें उनकी अधीनता से नहीं छुड़ाया? यह सब होने पर भी तुमने मुझे भुला दिया और अन्य देवताओं की सेवा उपासना की, इस कारण अब मैं तुम्हें ना छुड़ाऊंगा। जाओ, उन्हीं देवताओं की दोहाई दो जिन्हें तुमने अपने लिए चुन रखा है, उन्हें ही तुम्हें तुम्हारे संकट के अवसर पर सहायता करने दो। इज़राइल वंशजों ने यहावे से विनती की, हमने पाप किया है, हमारे साथ वही कीजिए जो आपको सही लगे, मगर आज हमें कृपा कर छुटकारा दे दीजिए। उन्होंने अपने बीच से सारे पराये देवता हटा दिए और वे यहावे की सेवा वंदना करने लगे। अब यहावे से इज़राइल की दुर्दशा देखी ना गई। वहां अम्मोन वंशजों को बुलाया गया और उन्होंने गिलाद में पड़ाव खड़े कर दिए। इज़राइल वंशज इकट्ठे हुए और उन्होंने मिस्पा में पड़ाव खड़े किए। गिलाद के नायक आपस में विचार करने लगे, कौन होगा वह व्यक्ति जो अम्मोन वंशजों से युद्ध शुरू करेगा, वही बनेगा गिलाद वासियों का प्रधान। प्रशासक अध्याय 11। गिलाद वासी यिफ्ता एक बहादुर योद्धा था, किंतु वह एक वैश्या का पुत्र था। उसके पिता का नाम गिलाद था। गिलाद की पत्नी से भी पुत्र पैदा हुए। जब ये पुत्र बड़े हुए तब उन्होंने उसे यह कहते हुए घर से निकाल दिया, तुम तो पराई स्त्री से जन्मे हो, इस कारण हमारे पिता की मीरास में तुम्हारा कोई भाग ना होगा। तब यिफ्ता अपने भाइयों से दूर भागकर तोब देश में रहने लगा। वहां निकम्मे खराब लोग उसके साथ ही बनते चले गए जो उसके साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद अम्मोन वंशजों ने इसराइलियों से युद्ध छेड़ दिया। जब अम्मोन वंशज इसराइल से युद्ध कर रहे थे, गिलाद के अगुए लोग तोब देश से यिफ्ता को लेने जा पहुंचे। उन्होंने यिफ्ता से विनती की, आकर हमारे सेनापति का कार्यभार संभाल लो कि हम अम्मोनियों से युद्ध कर सकें। गिलाद के अगुओं को यिफ्ता ने उत्तर दिया, क्या आप ही नहीं थे जिन्होंने घृणा करके मुझे मेरे पिता के घर से बाहर निकाल दिया था? अब जब आप पर संकट आ पड़ा है तो आप लोग मेरे पास क्यों आए हैं? गिलाद के अगुओं ने यिफ्ता को उत्तर दिया, तुम्हारे पास हमारे लौटने का कारण सिर्फ यह है कि तुम हमारे साथ चलो और अम्मोन वंशजों से युद्ध कर सारे गिलाद वासियों के प्रधान बन जाओ। इस पर यिफ्ता ने गिलाद के अगुओं से प्रश्न किया, अर्थात यदि आप मुझे अम्मोन वंशजों से युद्ध करने के उद्देश्य से वापस ले जाते हैं और यहावे उन्हें मेरे अधीन कर देते हैं तो मैं आपका प्रधान बन जाऊंगा। गिलाद के पुरनियों ने यिफ्ता को उत्तर दिया, स्वयं यहावे हमारे बीच गवाह है, निश्चय ही हम ठीक वैसा ही करेंगे जैसा तुमने अभी कहा है। सो यिफ्ता गिलाद के पुरनियों के साथ चला गया। प्रजाजनों ने उसे अपने ऊपर अधिनायक एवं प्रधान नियुक्त कर दिया। यिफ्ता ने मिस्पा में यहावे के सामने पूरी वाचा दोहरा दी। यिफ्ता ने तब अम्मोन वंशजों के राजा को इस संदेश के साथ दूत भेज दिए, मैंने आपकी ऐसी क्या हानि कर दी है जिसके निमित्त आप हमारे देश से युद्ध करने आ गए हैं? अम्मोन वंशजों के राजा ने यिफ्ता के दूतों को उत्तर दिया, मिस्र से निकलकर आते हुए इसराइल ने आर्नोन से लेकर यब्बोक तथा यर्दन तक की भूमि पर कब्जा कर लिया था, इसलिए अब सही होगा कि शांतिपूर्वक यह भूमि हमें लौटा दी जाए। यिफ्ता ने अम्मोन वंशजों के राजा के लिए दोबारा दूत भेजे। उन्होंने राजा से यों कहने को आदेश दिया, यिफ्ता का संदेश यह है, इसराइल ने ना तो मोआब की भूमि पर कब्जा किया है और ना ही अम्मोन वंशजों की, क्योंकि जब इसराइल मिस्र देश से निकला वह निर्जन प्रदेश में से लाल सागर पहुंचा और वहां से कादेश को। वहां पहुंचकर इसराइल ने एदोम के राजा के लिए दूतों से यह संदेश भेजा था, कृपा कर हमें आपके देश में से होकर आगे जाने की आज्ञा दीजिए। किंतु एदोम के राजा ने इस विनती की ओर तनिक भी ध्यान ना दिया। उन्होंने यही विनती मोआब के राजा से भी की, किंतु वह भी इसके लिए राजी ना हुआ। इस कारण इसराइल कादेश में ही रुक गया। तब उन्होंने निर्जन प्रदेश में से यात्रा की, इसके लिए उन्हें एदोम और मोआब देशों में प्रवेश ना करते हुए घूमकर आगे बढ़ना पड़ा और वे मोआब देश के पूर्व में पहुंच गए। उन्होंने आर्नोन के दूसरी ओर छावनी डाल दी और मोआब की सारी सीमा में प्रवेश किया ही नहीं। आर्नोन मोआब की सीमा पर था। इसके बाद इसराइल ने अमोरियों के राजा सीहोन को, जो हेशबोन से शासन कर रहे थे, दूतों द्वारा यह संदेश भेजा, कृपया हमें अपने देश में से होकर हमारे देश में पहुंचने की आज्ञा दीजिए। किंतु सीहोन ने इसराइल पर भरोसा ही ना किया कि वह उसके देश की सीमा से होकर निकल जाएगा। इस कारण सीहोन ने अपनी सेना तैयार की, यहत्स में छावनी डाल दी और इसराइल से युद्ध करने लगा। यहावे इसराइल के परमेश्वर ने सीहोन तथा उसकी सारी सेना को इसराइल के अधीन कर दिया। उन्होंने उन्हें हरा दिया। फलस्वरूप उस देश के निवासी तथा सारे अमोरी देश इसराइल के अधिकार में आ गए। आर्नोन से लेकर यब्बोक तक तथा निर्जन प्रदेश से लेकर यर्दन तक का सारा क्षेत्र उनका हो गया। अब आप ही बताइए, जब यहावे इसराइल के परमेश्वर ने ही अमोरियों को अपनी प्रजा इसराइल के सामने से हटा दिया है, क्या आपका इस पर कोई अधिकार रह जाता है? क्या आप स्वयं उस पर अधिकार नहीं किए हुए हैं जो आपने अपने देवता खेमोश से पाया है? इसलिए इसी प्रकार जो जगह यहावे हमारे परमेश्वर द्वारा हमारे सामने खाली करवाई गई है, हम उस पर अधिकार बनाए रखेंगे। क्या आप जिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक से बढ़कर है? क्या उसने कभी भी इसराइल का सामना करने का साहस किया था, अथवा क्या उसने कभी भी इसराइल से युद्ध किया? जब इसराइल 300 वर्षों से हेशबोन और उसके गांवों में, अरोवर तथा उसके गांवों में तथा आर्नोन के तटवर्ती नगरों में रहता रहा, आपने उन्हें उसी समय वापस कब्जा करने की कोशिश क्यों नहीं की? इन बातों के प्रकाश में मैंने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया है, बल्कि आप ही मुझसे युद्ध करने की भूल कर रहे हैं। यहावे जो न्याय अध्यक्ष है, वही आज इसराइल वंशजों तथा अम्मोन वंशजों के बीच न्याय करें। किंतु अम्मोन वंशजों के राजा ने यिफ्ता द्वारा भेजे संदेश को ना माना। इसी समय यहावे का आत्मा यिफ्ता पर उतरी। वह गिलात एव मनशशे में से होता हुआ आगे बढ़ा। इसके बाद वह मिज़्पा के लिए गिलाद में से होता हुआ वह अम्मोन वंशजों के क्षेत्र में जा पहुंचा। यिफ्ता ने यहावे के सामने यह शपथ ली, यदि आप वास्तव में अम्मोन वंशजों को मेरे अधीन कर देंगे, जब मैं अम्मोन वंशजों से सुरक्षित लौट आऊंगा, तब मेरे निवास के द्वारों में से जो कोई मुझसे भेंट करने बाहर आएगा वह यहावे का हो जाएगा, मैं उसे होम बलि के रूप में चढ़ा दूंगा। यिफ्ता ने आगे बढ़कर अम्मोन वंशजों पर हमला कर दिया। यहावे ने उन्हें उसके अधीन कर दिया। अरोवर से लेकर मिन्नीत के प्रवेश तक 20 नगरों में तथा आबेल केरामीन तक उसने घोर संहार किया। इस प्रकार अम्मोन वंशज इसराइल वंशजों के सामने हार गए। जब यिफ्ता अपने आवास मिज़्पा लौटा, उसने देखा कि उसकी पुत्री डफ बजाती हुई नाचती हुई उससे भेंट करने आ रही थी। वह यिफ्ता की इकलौती संतान थी। उसके अलावा उसके ना तो कोई पुत्र था ना कोई पुत्री। जैसे ही उसकी नज़र अपनी पुत्री पर पड़ी, उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले और कहा, हाय मेरी पुत्री, तुमने तो मुझे खत्म ही कर दिया। तुम मेरे शोक का कारण हो गई हो। मैंने यहावे को वचन दिया है जिसे मैं मना नहीं कर सकता। यह सुन उसकी पुत्री ने यिफ्ता को उत्तर दिया, पिताजी, आपने शपथ यहावे से की है, मेरे साथ आप वही कीजिए जैसा आपने कहा है। क्योंकि यहावे ने आपके द्वारा अम्मोन वंशजों आपके शत्रुओं से बदला लिया है। उसने अपने पिता से यह भी कहा, जैसा आपने कहा है मेरे साथ वैसा ही किया जाए, सिर्फ मुझे 2 महीने के लिए अकेली छोड़ दिया जाए कि मैं अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ों पर जाकर अपने कुंवारी ही रह जाने के लिए रोऊंगी। जाओ, यिफ्ता ने कहा, और उसने 2 महीने के लिए अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वह चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारी रह जाने के लिए रोती रही। 2 महीने पूरे होने पर वह लौटी और यिफ्ता ने उसके विषय में अपनी शपथ पूरी की, किसी पुरुष से उसका संबंध ना हुआ था। इसराइल में इसकी याद में एक प्रथा प्रचलित हो गई। इसराइली कन्याएं हर साल गिलादवासी यिफ्ता की पुत्री की याद में 4 दिन विलाप करती हैं। प्रशासक अध्याय 12। यिफ्ता और एफ्राइम। तब एफ्राइम वासियों ने सेना इकट्ठा किया। उन्होंने ज़ेफोन जाकर यिफ्ता से यह कहके झगड़ा किया, क्या मतलब था आपका हमें अपने साथ लिए बिना अम्मोन वंशजों से युद्ध के लिए जाने का? हम आपके साथ आपके घर में आग लगा देंगे। यिफ्ता ने उन्हें उत्तर दिया, अम्मोन वंशजों के साथ मेरा और मेरे साथियों का बड़ा झगड़ा हो गया था। मैंने आपको बुलाया तो था, किंतु आपने आकर मुझे उनसे नहीं छुड़ाया। जब मैंने देखा कि मुझे छुड़ाने में आपकी रुचि नहीं है, मैंने अपनी जान हथेली में लेकर अम्मोन वंशजों पर हमला किया और यहावे ने उन्हें हमारे वश में कर दिया। आप लोग अब मुझसे झगड़ा करने क्यों आए हैं? इस कारण यिफ्ता ने गिलाद के सारे सैनिकों को इकट्ठा किया और एफ्राइम से युद्ध करके गिलाद के सैनिकों ने उन्हें हरा दिया, क्योंकि एफ्राइम वासियों ने गिलाद वासियों पर आरोप लगाया था, तुम गिलाद वासी तो एफ्राइम के भगोड़े हो, तुम तो एफ्राइम तथा मनशशे के ही वासी हो। गिलाद वासियों ने एफ्राइम के पास वाले यर्दन के घाट अपने वश में कर लिए। जब कभी कोई व्यक्ति एफ्राइम से भागने की कोशिश में कहता था, मुझे पार जाने दो, गिलाद वासी उससे प्रश्न करते थे, क्या तुम एफ्राइम वासी हो? यदि वह उत्तर देता था, नहीं, तब गिलाद वासी उसे आदेश देते थे, कहो शिब्बोलेत, किंतु वह उच्चारण करता था सिब्बोलेत, क्योंकि उसके लिए इस शब्द का शुद्ध उच्चारण संभव नहीं होता था। यह होने पर गिलाद वासी उसे वहीं पकड़कर यर्दन के घाटों में मार दिया करते थे। उस समय इस प्रक्रिया में एफ्राइम के 42,000 व्यक्तियों को मार दिया गया। यिफ्ता 6 साल तक इसराइल का शासन करता रहा। इसके बाद गिलाद वासी यिफ्ता की मृत्यु हो गई। उसे गिलाद के ही एक नगर में गाड़ दिया गया। इब्जन, एलोन और अब्दोन। यिफ्ता के बाद बेथलेम के इब्जन ने इसराइल के शासन की जवाबदारी संभाली। उसके 30 पुत्र और 30 ही पुत्रियां थीं, जिनका विवाह उसने बाहर के गोत्र में किया था। इसी प्रकार उसने अपने पुत्रों का विवाह बाहरी गोत्रों में कर दिया था। उसने इसराइल का शासन 7 सालों तक किया। इसके बाद इब्जन की मृत्यु हो गई और उसे बेथलेम में ही गाड़ दिया गया। उसके बाद जेबलून वासी एलोन इसराइल का शासक हुआ। उसने 10 साल तक इसराइल पर शासन किया। जेबलून वासी एलोन की मृत्यु हुई और उसे जेबलून देश में एजालोन में गाड़ दिया गया। उसके बाद पिराथोन वासी हिल्लेल का पुत्र अब्दोन इसराइल का शासक हुआ। उसके 40 पुत्र और 30 पोते थे, जो 70 गधों पर आना जाना करते थे। उसने 8 साल इसराइल का शासन किया। पिराथोन वासी हिल्लेल के पुत्र अब्दोन की मृत्यु हो गई। उसे एफ्राइम देश के पिराथोन में अमालेकियों के पहाड़ी इलाके में गाड़ दिया गया। प्रशासक अध्याय 13। शिमशोन का जन्म। एक बार फिर इसराइल वंशजों ने वह किया जो यहावे की नजरों में गलत था। इस कारण यहावे ने 40 सालों के लिए उन्हें फिलिस्तीनियों के वश में कर दिया। दान के गोत्र से एक जोरावासी आदमी था जिसका नाम मानोहा था। उसकी पत्नी बांझ थी, उससे कोई संतान ना हुई थी। स्त्री के सामने यहावे के दूत ने प्रकट होकर उससे कहा, सुनो, तुम जो बांझ हो जिसके कोई संतान पैदा ना हुई है, गर्भ धारण करोगी और एक पुत्र को जन्म दोगी। अब तुम्हें यह सावधानी रखनी होगी कि तुम ना तो अंगूर का रस पियोगी, ना दाख मधु, और ना ही सांस्कारिक रूप से किसी भी अशुद्ध भोजन खाओगी, क्योंकि तुम्हें याद रखना होगा कि तुम गर्भ धारण करके एक पुत्र को जन्म दोगी। गर्भ धारण के समय से ही वह परमेश्वर के लिए नाजीर होगा, इसलिए उसके सिर पर उस्त्रा कभी ना फेरा जाए। वही इसराइल को फिलिस्तीनियों से छुड़ाने में नेतृत्व करेगा। स्त्री ने जाकर अपने पति को बताया, परमेश्वर का एक पुरुष मेरे पास आया था। उसका स्वरूप परमेश्वर के एक दूत के समान था, बहुत ही भयानक। ना तो मैंने उससे यह पूछा कि वह कहाँ से आया है, और ना ही उसने मुझे अपना नाम बताने की जरूरत समझी। उसने मुझे बताया, सुनो, तुम गर्भ धारण करके एक पुत्र को जन्म दोगी। अब से तुम अंगूर का रस, दाख मधु और सांस्कारिक रूप से किसी भी अशुद्ध वस्तु का सेवन नहीं करोगी, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक वह बालक परमेश्वर के लिए नाजीर होगा। यह सुन मानोहा ने यहावे से विनती करते हुए कहा, प्रभु आपके द्वारा भेजे गए परमेश्वर के दूत को हमारे पास दोबारा भेज दीजिए कि आने वाले शिशु के लिए हमें क्या क्या करना सही होगा वह हमें सिखा सके। परमेश्वर ने मानोहा की विनती सुन ली और परमेश्वर का दूत दोबारा उस स्त्री के पास आया। इस समय वह खेत में बैठी हुई थी, उसका पति मानोहा उस समय उसके साथ ना था। सो वह स्त्री दौड़ी दौड़ी गई और अपने पति को इसकी खबर दी, सुनिए, उस दिन जो व्यक्ति मुझे दिखाई दिया था मुझ पर दोबारा प्रकट हुआ है। मानोहा उठकर अपनी पत्नी के साथ चला गया। उस व्यक्ति के निकट पहुंचकर उसने प्रश्न किया, क्या आप ही वह है जिसने इस स्त्री से बातचीत की थी? हाँ, मैं ही हूँ, उसने उत्तर दिया। मानोहा ने आगे पूछा, जब आपकी कही हुई बातें पूरी होंगी, मेरे पुत्र की जीवन शैली कैसी होगी और क्या होगा उसका कार्य? यहावे के दूत ने मानोहा को उत्तर दिया, मैंने स्त्री से जो कुछ कहा है वह उसी का ध्यान रखे। वह अंगूर की किसी उपज को ना खाए, ना अंगूर का रस पिए, ना दाख मधु, और ना सांस्कारिक रूप से किसी भी अशुद्ध वस्तु को खाए। जरूरी है कि वह मेरे द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करे। तब मानोहा ने यहावे के दूत से विनती की, हम विनती करके आपको यहाँ रोकना चाहते हैं कि हम आपके लिए भोजन तैयार करें। यहावे के दूत ने मानोहा से कहा, मैं रुक तो जाऊंगा किंतु भोजन नहीं करूंगा। आज जब तक तुम भोजन तैयार कर ही रहे हो तो इसे यहावे को होमबलि चढ़ा देना। मानोहा को यह बोध ही ना था कि वह यहावे का दूत था। मानोहा ने यहावे के दूत से पूछा, आपका नाम क्या है? आपकी कही हुई बातें पूरी होने पर हम आपका आदर सत्कार करना चाहते हैं। यहावे के दूत ने उसे उत्तर दिया, क्यों पूछ रहे हो मेरा नाम? क्या इसलिए कि तुम्हें यह सब देख हैरानी हो रही है? इस कारण मानोहा ने उसी चट्टान पर यहावे को मेमना और अनबलि चढ़ाई। जब मानोहा और उसकी पत्नी यह सब देख ही रहे थे, यहावे ने एक अद्भुत काम कर दिखाया। जब वेदी से लपटे आकाश की ओर उठ रही थी, यहावे का दूत वेदी की आग की लो में होकर ऊपर चढ़ गया। यह देख मानोहा और उसकी पत्नी ने दंडवत होकर वंदना की। इसके बाद यहावे का दूत उन पर दोबारा प्रकट ना हुआ। अब मानोहा को यह समझ गया कि वह यहावे का दूत था। मानोहा ने अपनी पत्नी से कहा, अब हमारी मृत्यु तय है, हमने परमेश्वर को साक्षात देख लिया है। किंतु उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहावे का उद्देश्य हमारी मृत्यु ही होती, वह हमारे द्वारा चढ़ाई होमबलि एवं अनबलि स्वीकार क्यों करते? या वह क्यों हम पर यह सब प्रकट करते? अथवा वह हमारे सामने इन सब की घोषणा करते? उस स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम शिमशोन रखा। बालक बड़ा हुआ, उस पर यहावे की कृपा दृष्टि थी। उस समय यहावे का आत्मा उसे महाने दान में, जो जेरा तथा एश्ताउल के बीच में है, आत्मा उसे उभारने लगा। प्रशासक अध्याय 14। शिमशोन का विवाह। एक समय पर जब शिमशोन तिम्ना नगर को गया हुआ था, उसने वहां एक फिलिस्तीनी कन्या देखी। वहां से लौटने पर उसने अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फिलिस्तीनी लड़की देखी है, उससे मेरा विवाह कर दीजिए। उसके माता पिता ने उत्तर में उससे कहा, तुम्हारे संबंधियों में अथवा हमारे सजातियों में क्या कोई भी लड़की नहीं है कि तुम्हें खतना रहित फिलिस्तीनियों में की पुत्री से विवाह करने की सूझी है। किंतु शिमशोन ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा विवाह उसी से कर दीजिए, मुझे वही भा गई है। यद्यपि उसके माता पिता को यह मालूम ना था कि यह यहावे की योजना थी, क्योंकि वह फिलिस्तीनियों से बदले का अवसर खोज रहा था। इस समय फिलिस्ती इसराइल पर शासन कर रहे थे। शिमशोन अपने माता पिता के साथ तिम्ना गया। जब वे तिम्ना के अंगूरों के बगीचों तक पहुंचे, एक जवान शेर दहाड़ता हुआ उस पर लपका। बड़ी सामर्थ के साथ यहावे का आत्मा उस पर उतरा। शिमशोन ने उसे इस रीति से फाड़ डाला जैसे कोई एक मेमने को फाड़ देता है, जबकि शिमशोन के हाथों में कोई भी हथियार ना था। इस काम की चर्चा उसने अपने माता पिता से नहीं की। उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की, वह उसे प्रिय लगी। कुछ समय बाद उस कन्या से विवाह करने के लिए वह तिम्ना लौटा। शेर का शव देखने के लिए मार्ग से मुड़ा। उसने देखा कि शेर के शव में मधुमक्खियों का छत्ता था, उसमें शहद लगा हुआ था। उसने अपने हाथों में वह शहद ले लिया और उसे खाता हुआ आगे बढ़ गया। जब वह अपने माता पिता के पास पहुंचा, उसने उन्हें भी वह शहद दिया और उन्होंने भी उसे खाया। किंतु शिमशोन ने उन्हें यह ना बताया कि उसने यह मधु शेर के शव में से निकाला था। तब उसका पिता उस स्त्री के घर पर पहुंचा। शिमशोन ने वहां एक भोज आयोजित किया जैसा कि वहां के युवकों की रीति थी। जब उन्होंने देखा और उन्होंने उसके साथ साथ रहने के लिए 30 युवक चुन दिए। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे विचारने के लिए एक पहेली देता हूँ। यदि तुम विवाह उत्सव के 7 दिन के भीतर यह पहेली का समझ बूझ कर मुझे इसका उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें मलमल के 30 बाहरी वस्त्र और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। मगर यदि तुम इसका उत्तर ना दे सको तो तुम्हें मुझे 30 बाहरी वस्त्र और 30 जोड़े कपड़े देना पड़ेगा। उन्होंने उत्तर दिया, पेश करो अपनी पहेली, हम सुन रहे हैं। शिमशोन ने कहा, खाने वाले में से भोजन तथा बलवंत में से मिठास। 3 दिन बीत गए मगर इस पहेली का उत्तर वे ना दे सके। 4th दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसलाओ कि वह उस पहेली का मतलब हमें बता दे, अगर नहीं तो हम तुम्हें और तुम्हारे पिता के घर को आग लगा देंगे। क्या हमें आमंत्रित करने में तुम्हारी मंशा हमें कंगाल कर देने की थी? क्या यही सच नहीं? शिमशोन की पत्नी उसके सामने रोने लगी और उसने शिमशोन से कहा, तुम तो मुझसे नफरत करते हो, तुम्हें मुझसे प्रेम है ही नहीं। मेरे जाति वाले युवाओं के सामने तुमने पहेली प्रस्तुत की और मुझे इसका हल नहीं बताया। शिमशोन ने साफ किया, देखो इसका हल तो मैंने अपने माता पिता तक को नहीं बताया है, क्या मैं यह तुम्हें बता दूं? फिर भी 7th दिन जब तक विवाह उत्सव चलता रहा वह रोती रही। अंत में 7th दिन शिमशोन ने उसे पहेली का हल बता ही दिया। उसकी पत्नी ने उसे इस सीमा तक तंग कर दिया था। उसने जाकर अपने जाति वाले युवकों को पहेली का उत्तर जा सुनाया। 7th दिन सूरज डूबने के पहले उन नगरवासियों ने जाकर शिमशोन से कहा, क्या हो सकता है शहद से मीठा? कौन है शेर से अधिक बलवान? शिमशोन ने उनसे कहा, यदि तुमने मेरी बछिया से खेत ना जोता होता तो मेरी पहेली का उत्तर बिना सुलझा ही रहता। तब बड़ी ही सामर्थ के साथ यहावे का आत्मा शिमशोन पर उतरी। वह अश्कलोन गया, 30 व्यक्तियों को मार गिराया। उनका सामान इकट्ठा कर उसने वे कपड़े उन्हें दिए जिन्होंने उस पहेली का उत्तर दे दिया था। उसका क्रोध भड़कता हुआ वह अपने पिता के घर को लौट गया। शिमशोन की पत्नी उसके उस साथी को दे दी गई जो उसका मित्र था।
प्रशासक अध्याय 15। शिमशोन द्वारा उपज को भस्म करना। कुछ समय बाद गेहूं की कटनी के समय पर शिमशोन एक मेमना लेकर अपनी पत्नी से भेंट करने गया। उसने उसके पिता से कहा, मुझे अपनी पत्नी के कमरे में जाने की अनुमति दीजिए। किंतु उसके ससुर ने उसे अनुमति नहीं दी। उसके ससुर ने उससे कहा, मुझे तो यह लगा कि तुम्हें उससे घोर नफरत हो गई है, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे साथी को दे दिया है। सुनो, क्या उसकी छोटी बहन उससे अधिक सुंदर नहीं है? अपनी पत्नी के स्थान पर तुम उसकी छोटी बहन को ले लो। इस पर शिमशोन ने कहा, अब यदि फिलिस्तीनियों का कोई नुकसान होता है तो मुझे दोष ना देना। शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी, दो दो लोमड़ियों की पूछों को बांधकर उनके बीच एक मशाल बांध दी। जब उसने मशालों को जला लिया, उसने लोमड़ियों को फिलिस्तीनियों की खड़ी उपज में छोड़ दिया। इससे उनकी पूलियां तथा खड़ी हुई उपज जल गई। इसके अलावा उनके अंगूर के बगीचे और जैतून के बगीचे भी नष्ट होते गए। फिलिस्तीनी पूछताछ करने लगे, किसने किया है यह, और उन्हें बताया गया, शिमशोन तिमनी के दामाद ने, क्योंकि तिमनी ने उसकी पत्नी उसके साथी को दे दी है, इसलिए फिलिस्तीनी आए और उसकी पत्नी और ससुर को जला दिया। शिमशोन ने उनसे कहा, तुमने जो कदम उठाया है उसके कारण मैं शपथ खाता हूं कि जब तक मैं तो इसका बदला नहीं लूंगा, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। फिर उसने बड़ी निर्दयते से उनको मार डाला और उसके बाद जाकर एथाम की चट्टान की गुफा में रहने लगा। फिलिस्तीनियों ने यहूदिया में पड़ाव डाल दिए और उधर के लेही नगर पर हमला कर दिया। यहूदिया के रहने वालों ने उनसे पूछा, हम पर हमला क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधकर ले जाने के लिए हम आए हैं ताकि हम उससे बदला लें। इसलिए यहूदिया के रहने वाले 3,000 लोग एथाम की चट्टान पर जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तुम भूल गए कि फिलिस्तीनी हमारे शासक हैं? तुमने हमारे साथ यह क्या कर डाला है? शिमशोन ने उन्हें उत्तर दिया, जैसा उन्होंने मेरे साथ किया वैसा ही मैंने भी उनके साथ किया है। यहूदिया के रहने वालों ने उससे कहा, तुम्हें बंदी बनाकर फिलिस्तीनियों को सौंप देने के लिए हम यहां आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, बस मुझसे शपथ लो कि तुम मेरी हत्या ना करोगे। उन्होंने उसे आश्वासन दिया, नहीं नहीं, हम तुम्हें अच्छी तरह से बांधकर फिलिस्तीनियों को सौंप देंगे, मगर हम तुम्हारी हत्या नहीं करेंगे। तब उन्होंने शिमशोन को दो नई रस्सियां लेकर बांध दिया और उसे गुफा में से बाहर ले आए। जब वे लेही पहुंचे, फिलिस्तीनी उससे मिलने के लिए चिल्लाते हुए आ गए। यहावे का आत्मा सामर्थ में शिमशोन पर उतरा, उसकी बांधी गई रस्सियां ऐसी हो गई जैसे आग में जला हुआ सन, उसके बंधन उसके हाथों से गिर पड़े। उसे वहीं एक गधे के जबड़े की हड्डी मिली जिसे उसने उठा लिया और उससे 1,000 फिलिस्तीनियों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने उनके ढेर पर ढेर लगा दिए, गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1,000 व्यक्तियों को मार दिया। यह कहकर उसने गधे के जबड़े की हड्डी फेंक दी। वह स्थान रामात लेही नाम से मशहूर हो गया। तब वह बहुत ही प्यासा हो गया। उसने इन शब्दों में यहावे की दोहाई दी, आपने अपने सेवक को यह महान विजय दी है, अब क्या मैं इस प्यास के कारण इन खतना रहित लोगों द्वारा मारा जाऊंगा? तब परमेश्वर ने लेही की भूमि के उस गड्ढे को ऐसा फाड़ दिया कि उसमें से जल निकलने लगा। जब शिमशोन ने उसे पिया, उसमें दोबारा बल आ गया और वह फिर से ताजा हो गया। इस घटना के कारण उसने उस स्थान को एन हेकोर नाम दिया। लेही में यह आज तक बना हुआ है। फिलिस्तीनियों के शासन काल में शिमशोन ने 20 साल तक इसराइल पर शासन किया। प्रशासक अध्याय 16। शिमशोन का पतन। जब शिमशोन अज्जा गया हुआ था, वहां उसकी नजर एक वेश्या पर पड़ी, उसने उसके साथ संबंध बनाए। अज्जा वासियों को बताया गया, शिमशोन यहां आया हुआ है। यह सुन उन्होंने उस स्थान को घेर लिया और सारी रात नगर के फाटक पर घात लगाए बैठे रहे। सारी रात वे चुपचाप रहे। उनकी योजना थी, हम सुबह होने का इंतजार करेंगे और भोर में हम उसकी हत्या कर देंगे। शिमशोन आधी रात तक सोता रहा, फिर वह उठा, नगर द्वार के पल्लों को तथा दोनों मीनारों को पकड़ा, उन्हें उनकी छड़ों सहित उखाड़कर अपने कंधों पर रखा और उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। इसके बाद कुछ समय में उसे सोरेक घाटी की एक स्त्री से प्रेम हो गया। जिसका नाम दलीला था, फिलिस्तीनी के प्रधान दलीला से भेंट करने आए और उसे आज्ञा दी, उसे फुसलाकर यह मालूम करो कि उसकी इस महान शक्ति का राज क्या है और यह भी कि उसे कैसे बांधा जा सकता है ताकि उसे वश में किया जाए। यह होने पर हमसे हर एक तुम्हें 1100 चांदी के सिक्के देगा। दलीला ने शिमशोन से पूछा, कृपया मुझे बताइए आपकी महान शक्ति का राज क्या है, आपको दबाने के लिए किस प्रकार बांधा जा सकता है। शिमशोन ने उसे उत्तर दिया, यदि वे मुझे 7 ऐसी तांतों से बांध दें जिन्हें सुखाया नहीं गया है तो मैं निर्बल हो जाऊंगा, किसी भी दूसरे मनुष्य के समान साधारण। फिलिस्तीनी प्रधानों ने 7 नई तांते लाकर दलीला को दे दी जो सुखाई नहीं गई थी। दलीला ने शिमशोन को इनसे बांध दिया। उसने एक कमरे में कुछ व्यक्ति घात में बैठा रखे थे। वह चिल्लाई, शिमशोन, फिलिस्तीनी तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। किंतु शिमशोन ने उन तांतों को ऐसे तोड़ दिया जैसे आग लगते ही धागा टूट जाता है। उसका बल रहस्य ही बना रहा। दलीला ने शिमशोन से कहा, देखिए आपने मेरे साथ छल किया है, आपने झूठ कहा है, कृपया मुझे बताइए कि आपको किस प्रकार बांधा जा सकता है। शिमशोन ने उसे उत्तर दिया, यदि वे मुझे ऐसी रस्सियों से बांधे जिनका उपयोग पहले किया नहीं गया है मैं किसी भी अन्य व्यक्ति के समान निर्बल रह जाऊंगा। तब दलीला ने वैसा ही किया, उसने शिमशोन को नई रस्सियों से बांध दिया। यह करने के बाद वह चिल्लाई, शिमशोन, फिलिस्तीनी तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं, ये लोग कमरे में इसकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। शिमशोन ने अपनी बाहों पर बांधी गई इन रस्सियों को ऐसे तोड़ दिया मानो उसकी बाहें धागों से बांधी गई हो। दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक मेरे साथ झूठ और छल ही करते रहे हैं, मुझे बताइए कि आपको बांधा कैसे जा सकता है। शिमशोन ने उसे उत्तर दिया, यदि मेरी 7 लटों को बूनकर ऊँटी की सहायता से जकड़ दे तो मैं निर्बल और किसी भी दूसरे व्यक्ति के समान हो जाऊंगा। सो जब शिमशोन सो रहा था दलीला ने उसकी 7 लटों को वस्त्र में बुन दिया और उन्हें खूंटी में फंसा दिया। फिर वह चिल्लाई, शिमशोन, आपको पकड़ने के लिए फिलिस्तीनी आ रहे हैं। शिमशोन नींद से जाग उठा और करघे की खूंटी समेत वस्त्र को खींचकर ले गया। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, यह कैसे संभव है कि आप मुझसे यह कहे मुझे तुमसे प्रेम है, जब आपका हृदय मेरे प्रति सच्चा ही नहीं है। 3 बार आपने मुझसे छल किया है और मुझसे यह छिपाए रखा है कि आपकी अपार शक्ति का राज क्या है। तब वह उसे हर दिन सताने लगी। वह शिमशोन को इतना मजबूर करने लगी कि शिमशोन की नाक में दम आ गया। सो शिमशोन ने उसके सामने वह सब प्रकट कर दिया जो उसके हृदय में था। उसने दलीला को बताया, मैं अपनी माता के गर्भ से परमेश्वर के लिए नाजीर हूँ। मेरे सिर पर कभी भी उस्त्रा नहीं लगाया गया है। यदि उस्त्रे से मेरे केश साफ कर दिए जाए तो मैं निर्बल होकर साधारण मनुष्य समान हो जाऊंगा। जब दलीला को यह एहसास हुआ कि शिमशोन ने उस पर अपने हृदय के सारे राज बता दिए हैं, उसने फिलिस्तीनी प्रधानों को यह संदेश देते हुए बुलवा लिया, एक बार और आ जाइए क्योंकि उसने मुझे सारा राज बता दिया है। तब फिलिस्तीनी प्रधान उसके पास आए और अपने साथ वे सिक्के भी ले आए। उसने शिमशोन को अपने घुटनों पर सुला लिया, एक आदमी को बुलवाकर उसकी 7 लटों पर उस्त्रा चलवा दिया। शक्ति उसमें से जाती रही और दलीला उसे अपने वश में करने लगी। वह चिल्लाई, शिमशोन, फिलिस्तीनी आपको पकड़ने आ रहे हैं। वह अपनी नींद से जाग उठा। उसने सोचा, इसके पहले के अफसरों के समान मैं अब भी एक झटके में स्वयं को आजाद कर लूंगा। किंतु उसे यह मालूम ही ना था कि यहावे उसे छोड़ गए हैं। फिलिस्तीनी आए और उन्होंने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली। वे उसे अज्जा ले गए और उसे कांसे की बेड़ियों में जकड़ दिया। वह कारागार में चक्की चलाने लगा। उसके सिर पर उस्त्रा फेरे जाने के बाद अब उसके बाल दोबारा बढ़ने लगे। शिमशोन का बदला। फिलिस्तीनी प्रधानों ने अपने देवता दागोन के सम्मान में आनंद उत्सव और विशेष बलि का आयोजन किया। उनका विचार था, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथों में सौंप दिया है। जब लोगों ने शिमशोन को देखा
उन्होंने अपने देवता की स्तुति में कहा, हमारे देवता ने हमारे शत्रु को हमारे वश में कर दिया है। वह हमारे देश को नाश करता रहा, उसने हमारी प्रजा के बहुतों को मार गिराया है। जब वे इस प्रकार के उल्लास में लीन थे, उन्होंने प्रस्ताव किया, शिमशोन को बुलवाया जाए कि वह हमारा मनोरंजन करें। तब उन्होंने कारागार से शिमशोन को बुलवाया और वह उनका मनोरंजन करने लगा। उन्होंने शिमशोन को मीनारों के बीच में खड़ा कर दिया। वहां शिमशोन ने उस बालक से कहा जो उसे चलाने के लिए उसका हाथ पकड़ा करता था, मुझे उन मीनारों को छूने दो जिन पर यह भवन टिका है, कि मैं उनका टेक ले सकूं। इस समय वह भवन स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था। सभी फिलिस्तीनी शासक भी वहीं थे। छत पर लगभग 3,000 स्त्री पुरुष शिमशोन द्वारा किया जा रहा मनोरंजन का कार्य देख रहे थे। जब शिमशोन ने यहावे की यह दोहाई दी, प्रभु यहावे, कृपा कर मुझे याद कीजिए, परमेश्वर, बस एक ही बार मुझे शक्ति दे दीजिए कि मैं फिलिस्तीनियों से अपनी दोनों आंखों का बदला ले सकूं। शिमशोन ने दो बीच की मीनारों को पकड़ लिया जिन पर पूरा भवन टिका था। उसने उन्हें मजबूती से जकड़कर उन पर अपना सारा बोझ डाल दिया। उसका दाया हाथ एक खंभे को तथा बायां हाथ दूसरे को पकड़ा हुआ था। शिमशोन ने विचार किया, सही होगा कि मेरी मृत्यु फिलिस्तीनियों के साथ ही हो जाए। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर झुक गया। तब यह हुआ कि वह भवन प्रधानों और वहां जमा हुआ लोगों पर आ गिरा। इस प्रकार उनकी गिनती, जिनकी हत्या शिमशोन ने स्वयं अपनी मृत्यु के साथ की थी, उनसे अधिक हो गई, जिनकी हत्या शिमशोन ने अपने जीवन भर में की थी। तब उसके भाई और उसके पिता के परिवार के सभी सदस्य वहां आ गए और उसे वहां से उठाकर जोरा तथा एश्ताउल के बीच उसके पिता मानोहा की गुफा में कब्र में ले जाकर रख दिया। शिमशोन ने 20 साल इज़राइल का शासन किया था। प्रशासक अध्याय 17। मीका द्वारा प्रतिमा पूजन। एफ्राइम के पहाड़ी इलाके में मीका नामक एक व्यक्ति था। उसने अपनी माता को बताया, जो 1100 चांदी के सिक्के मैंने आपसे लिए थे, जिनके कारण आपने मुझे सुनाकर शाप दिया था, देख लीजिए वे मेरे पास है, उन्हें मैंने ही लिए थे। उसकी माता ने कहा, यहावे मेरे पुत्र को आशीषित करे। उसने 1100 सिक्के अपनी माता को लौटा दिए। उसकी माता ने कहा, मैं ये सारे सिक्के अपने हाथों से अपनी पुत्र के लिए यहावे को भेंट में दे देती हूँ कि इनसे एक खोदी हुई और चांदी से ढाली गई मूर्ति बनाई जाए। इस काम के लिए अब मैं ये तुम्हें ही सौंप रही हूँ। जब उसने अपनी माता को सिक्के लौटाए, उसकी माता ने 200 सिक्के लेकर सुनार को दे दिए कि वह उनसे खोदी हुई और चांदी ढाली गई मूर्ति को बनाए। उस स्त्री ने इसे मीका के घर में स्थापित कर दिया। इस व्यक्ति मीका ने एक वेदी बनाकर रखी थी। उसने एफोद तथा परिवार से संबंधित मूर्तियों को बनाया। उसने अपने एक पुत्र को पुरोहित पद पर प्रतिष्ठित किया। उन दिनों में इज़राइल देश में राजा नहीं होता था। हर एक व्यक्ति वही करता था जो उसे सही लगता था। यहूदा गोत्र के यहूदिया प्रदेश के बैतलेम नगर में एक जवान लेवी रह रहा था। यह व्यक्ति यहूदिया के बैतलेम को छोड़कर रहने के लायक जगह को खोजने निकल पड़ा। खोजते हुए वह एफ्राइम के पहाड़ी इलाके में मीका के घर तक पहुंच गया। मीका ने उससे पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? उसने उत्तर दिया, मैं लेवी हूँ और मैं यहूदिया के बैतलेम से आ रहा हूँ। जहाँ कहीं मुझे सही जगह मिलेगी, मैं वहीं बस जाऊँगा। मीका ने उसके सामने प्रस्ताव रखा, आप मेरे यहाँ रह सकते हैं। आप मेरे लिए पिता और पुरोहित की भूमिका भी कर सकते हैं। मैं आपको वार्षिक दर से 10 चांदी के सिक्के, एक जोड़ा कपड़ा और भोजन दिया करूंगा। लेवी इस पर सहमत हो गया। जवान लेवी मीका के लिए उसके पुत्रों में से एक के समान हो गया। तब मीका ने लेवी को शुद्ध किया। जवान लेवी उसके लिए पुरोहित बन गया था। वह मीका के ही घर में रहने लगा। मीका ने कहा, अब मुझमें यह विश्वास हो गया है कि यहावे मुझे धनी बना देंगे, क्योंकि एक लेवी मेरे लिए पुरोहित हो गया है। प्रशासक अध्याय 18।
दान वंशजों का प्रवासन। उन दिनों इज़राइल का कोई राजा ना था। उन्हीं दिनों में दान वंशजों ने अपने बसने के लिए सही जमीन की खोज करने शुरू कर दी। अब तक उन्हें इज़राइल के गोत्रों के बीच कोई जमीन नहीं दी गई थी। अतः दान वंशजों ने अपने पूरे गोत्र की तरफ से 5 आदमी भेजे। ये व्यक्ति जोरा तथा एश्ताउल नामक नगरों से थे। इन्हें वहां गुप्त रूप से जाकर भेद लेना था। उन्हें आदेश दिया गया था, जाओ उस देश की छानबीन करो और उसका भेद लो। वे लोग खोजते हुए एफ्राइम के पहाड़ी इलाके में मीका के घर तक आ पहुंचे और वे वहीं ठहर गए। जब वे मीका के घर के पास पहुंचे, उन्होंने उस जवान लेवी की आवाज पहचान ली। उन्होंने उसे अलग ले जाकर उससे पूछा, कौन तुम्हें यहाँ ले आया है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास यहाँ क्या है? लेवी ने उन्हें उत्तर दिया, मीका ने मेरे लिए इतना सब किया है, उन्होंने मुझे नौकरी पर रखा है, अब मैं उनका पुरोहित हूँ। उन्होंने लेवी से विनती की, कृपया परमेश्वर से यह मालूम कर हमें बता दीजिए कि हम जिस काम से निकले हैं वह पूरा होगा या नहीं। पुरोहित ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग शांतिपूर्वक जाइए, आपके इस काम पर यहावे का अनुग्रह है। वे पांचों वहां से अपनी यात्रा पर निकल गए और लाइश नामक नगर को आए और पाया कि वहां के रहने वाले सुरक्षा में रह रहे थे। वे सीदोन वासियों के समान शांत और सुरक्षित थे। पूरे देश में किसी भी चीज की कमी ना थी। वे समृद्ध लोग थे। वे सीदोन वासियों से दूर थे, इस कारण किसी के साथ उनका कोई लेन देन ना था। जब वे जोरा तथा एश्ताउल में अपने भाइयों के पास लौटे तो उन्होंने उससे पूछा, क्या समाचार लाए हो? उन्होंने उत्तर दिया, उठिए चलिए, हम उन पर हमला करें। हमने उस देश का मुआयना कर लिया है, यह समृद्ध देश है। क्या अब भी आप चुपचाप बैठे रहेंगे? ना तो चलने में देरी कीजिए, ना वहां प्रवेश करने में, ना उस देश को अपने अधीन करने में। जैसे ही आप उस देश में प्रवेश करेंगे, आपकी भेंट ऐसे लोगों से होगी जो आप पर किसी प्रकार से शक नहीं करेंगे। यह देश बहुत फैला हुआ है, यह देश परमेश्वर ने आपके अधीन कर दिया है, जहां पृथ्वी की किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। इस तरह दान गोत्र के 600 योद्धा जोरा तथा एश्ताउल से निकल पड़े। उन्होंने यहूदिया जाकर किर्यत यारीम नामक स्थान पर अपना पड़ाव खड़ा कर दिया। इस कारण वे आज तक उस जगह को महाने दान के नाम से जानते हैं। यह किर्यत यारीम के पश्चिम में स्थित है। वहां से निकलकर वे एफ्राइम प्रदेश के पहाड़ी इलाके में मीका के घर के पास जा पहुंचे। तब उन 5 व्यक्तियों ने जो लाइश का भेद लेने के लिए भेजे गए थे अपने साथियों से कहा, क्या आप जानते हैं कि इन घरों में एक एफोद, गृह देवताओं की मूर्तियां, एक खुदी हुई और एक ढाली गई मूर्ति रखी है। इस कारण अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिए कि क्या करना सही है। वे वहां के जवान लेवी वंशज पुरोहित के घर पर गए जो उसे मीका द्वारा दिया गया था। उन्होंने उसका कुशल समाचार पूछा। दान वंशज 600 योद्धा प्रवेश फाटक पर खड़े रहे। तब वे 5 पुरुष जो इसके पहले यहां भेद लेने आ चुके थे वहां जाकर अंदर चले गए और जाकर खोदी हुई मूर्ति, एफोद, गृह देवता और ढली हुई मूर्ति उठा ली। इस समय पुरोहित उन 600 योद्धाओं के साथ प्रवेश फाटक पर खड़ा हुआ था। जब ये लोग मीका के घर में जाकर खोदी हुई मूर्ति, एफोद, गृह देवता और ढली हुई मूर्ति उठा रहे थे, पुरोहित ने उनसे कहा, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने उससे कहा, चुप रहो, अपना हाथ अपने मुंह पर रखो, हमारे साथ चलकर हमारे लिए पिता और पुरोहित बन जाओ। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, एक ही व्यक्ति के परिवार के लिए पुरोहित बने रहना या इज़राइल के एक गोत्र और परिवार के लिए पुरोहित होकर रहना? पुरोहित ने प्रसन्न हृदय से खोदी हुई मूर्तियां, एफोद और गृह देवता की मूर्तियां अपने साथ ली और उन लोगों के साथ चल दिया। वे लौट गए, उनके बालक, उनके पशु और उनकी सारी मूल्यवान वस्तुएं उनके आगे आगे जा रही थीं। जब वे मीका के घर से कुछ दूर जा चुके थे, मीका के पड़ोसी इकट्ठे हुए और वे दान वंशजों के समूह के पास जा पहुंचे। उन्होंने दान वंशजों को पुकारा
जिन्होंने मुड़कर मीका से पूछा, क्या हो गया है आपको जो आप इस तरह इकट्ठा हो गए हैं? मीका ने उत्तर दिया, आपने मेरे द्वारा बनाए देवता और मेरे पुरोहित को ले लिया है और आप इन्हें लेकर जा रहे हैं, तो मेरे लिए क्या बचा है? फिर आप यह कैसे पूछ सकते हैं क्या हो गया है? दान वंशजों ने उनसे कहा, सही यह होगा कि आपकी आवाज हमारे बीच सुनी ही ना जाए, नहीं तो हमारे क्रोधी स्वभाव के लोग आप पर हमला कर देंगे और आप अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे तथा आपके परिवार के लोग भी मारे जाएंगे। यह कहकर दान वंशजों का समूह आगे बढ़ गया। यहां जब मीका ने यह देखा कि दान वंशज उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, वह अपने घर लौट गया। मीका द्वारा बनी हुई वस्तुएं तथा मीका के पुरोहित को साथ लिए हुए दान वंशज लाइश नामक स्थान पर पहुंचे। यहां के निवासी कोमल स्वभाव के थे, जिन्होंने इन पर कोई भी शक नहीं किया। दान वंशजों ने उन्हें तलवार से मारकर उनके नगर में आग लगाकर उसे भस्म कर दिया। उनकी रक्षा के लिए वहां कोई नहीं आया, क्योंकि यह नगर सीदोन से दूर बसा हुआ नगर था। इनका किसी से भी लेन देन ना था। यह घाटी में बसा हुआ नगर था जो बेथ रिहोब के पास था। दान वंशजों ने नगर का नाम अपने मूल पुरुष के नाम पर दान रखा, जो इज़राइल के पुत्र थे। इसके पहले इस नगर का नाम लाइश था। इसके बाद दान वंशजों ने अपने लिए खोदी हुई मूर्ति बना ली। मनशशे का पुत्र गेरशोम का पुत्र योनातन तथा उसके पुत्र दान वंशजों के लिए पुरोहित बन गए तथा इज़राइल के बंधुआई में जाने तक इसी पद पर रहते हुए सेवा करते रहे। उन्होंने मीका की खोदी हुई मूर्ति को अपने लिए स्थापित कर लिया और यह मूर्ति तब तक रही जब तक शीलो में परमेश्वर का भवन बना रहा।
प्रशासक अध्याय 19। लेवी की उपपत्नी। उन दिनों में जब इज़राइल का कोई राजा ना था, एफ्राइम के दूर के पहाड़ी इलाके में एक लेवी निवास करता था। वह यहूदिया के बेथलेम नगर से एक स्त्री ले आया कि वह स्त्री उसकी उपपत्नी हो जाए, किंतु उसकी उपपत्नी ने इस संबंध का विश्वासघात किया। वह उसे छोड़ अपने पिता के यहाँ यहूदिया के बेथलेम में चली गई, जहाँ वह 4 महीने तक रहती रही। इस पर उसका पति अपने साथ एक सेवक और एक जोड़ा गधे लेकर उससे मिलने निकल पड़ा कि उसे प्रेम पूर्वक समझाकर अपने साथ लौटा ले आए। उसने अपने पति को अपने पिता के घर में ठहरा लिया। जब उसके पिता ने उसके पति को देखा तो वह आनंदित हुआ। उस लेवी के ससुर ने उसे रोक लिया। लेवी वहां 3 दिन ठहरा रहा। वे वहां खाते पीते ठहरे रहे। 4थे दिन वे बड़े तड़के उठ गए और लेवी यात्रा के लिए तैयार हुआ। स्त्री के पिता ने अपने दामाद से विनती की, थोड़ा भोजन करके शरीर में ताकत आने दो, फिर चले जाना। तब वे दोनों बैठ गए। उन्होंने साथ साथ खाया पिया। स्त्री के पिता ने लेवी से कहा, कृपया यहाँ एक और रात बिताने के लिए राजी हो जाओ और अपने हृदय को आनंद करने दो। एक बार फिर वह व्यक्ति यात्रा के लिए निकलने लगा, मगर उसके ससुर की विनती पर उसे दोबारा वहीं रात बितानी पड़ी। 5वें दिन बड़े तड़के वह यात्रा के लिए निकलने लगा। स्त्री के पिता ने उससे विनती की, कृपा कर अपना जी ठंडा करो और शाम तक और ठहर जाओ। सो उन दोनों ने भोजन किया। जब वह व्यक्ति अपने सेवक और उपपत्नी के साथ यात्रा के लिए निकलने लगा, स्त्री के पिता उसके ससुर ने उससे कहा, देखो दिन ढल ही चुका है, अब रात यहीं बिता लो। देख दिन खत्म ही हो चुका है, अपने जी को ठंडा कर लो। कल सुबह जल्दी उठकर यात्रा शुरू करना कि तुम अपने घर पहुंच सको। मगर वह व्यक्ति अब वहां रात बिताने के लिए तैयार ना था, सो वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। चलते हुए वे येबूस अर्थात यरूशलेम के पास एक जगह पर पहुंचे। उसके साथ एक जोड़ा लकड़ी कसे हुए गधे थे तथा उसकी उपपत्नी भी उसके साथ थी। येबूस पहुंचते हुए दिन लगभग ढल ही चुका था। सेवक ने अपने स्वामी से कहा, कृपया हम यहीं रुककर इस नगर में चले जाए तथा यबूसियों के इस नगर में रात बिता लें। मगर उसके स्वामियों ने उससे कहा, हम इन विदेशियों के नगर में आसरा नहीं लेंगे, ये इज़राइल वंशज नहीं है।
हाँ, हम गिबिया तक चले चलते हैं। अपने सेवक से उसने कहा, आओ हम इनमें से किसी एक जगह को चले, हम गिबिया अथवा रामा में रात बिताएंगे। इस कारण वे वहां से आगे बढ़ गए और गिबिया पहुंचते हुए सूरज भी ढल गया। गिबिया बिन्यामीन इलाके में था। वे नगर में प्रवेश के लिए मुड़े कि नगर में ठहर सके। नगर में प्रवेश कर वे नगर चौक की खुली जगह में जाकर बैठ गए, क्योंकि किसी ने भी उन्हें रात बिताने के लिए अपने घर में ना बुलाया। खेत में दिन का काम खत्म कर एक बूढ़ा व्यक्ति उसी ओर आ रहा था। यह व्यक्ति एफ्राइम के पहाड़ी इलाके से ही था और गिबिया में रह रहा था, जबकि यह बिन्यामीन वंशजों का नगर था। जब उस बूढ़े व्यक्ति की नज़र नगर चौक में इन यात्रियों पर पड़ी, उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ से आए हैं? उसने उत्तर में कहा, हम लोग यहूदिया के बेथलेम से एफ्राइम के पहाड़ी इलाके की एक दूर की जगह को जा रहे हैं, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मैं यहूदिया के बेथलेम नगर को गया हुआ था। ठहरने की जगह देने के लिए किसी ने मुझे नहीं बुलाया। मेरे पास अपने गधों के लिए चारा और हमारे लिए भोजन तथा अंगूर का रस है। आपकी सेविका तथा आपके सेवक के साथ जो युवक है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने उनसे कहा, शांति तुम पर बनी रहे, मैं तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी करूंगा, मगर इस खुले चौक में रात ना बिताना। सो वह उन्हें अपने घर ले गया, गधों को चारा दिया, उन्होंने अपने पांव धोए और भोजन किया। जब वे आनंद कर ही रहे थे, नगर के कुछ लुच्चे लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। वे दरवाजे पर वार कर रहे थे। उन्होंने उस घर के स्वामी, उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, उस व्यक्ति को बाहर भेजो कि हम उसके साथ शारीरिक संबंध बना सके। इस पर घर के स्वामी ने बाहर आकर उनसे कहा, नहीं मेरे भाइयों, ऐसा कुकर्म ना करो, यह व्यक्ति मेरा मेहमान है, ऐसा मूर्खता भरा कदम ना उठाओ। यहाँ मेरी कुआरी बेटी है और मेरे अतिथि की उपपत्नी भी, तुम उन्हें भ्रष्ट कर सकते हो और जैसा तुम्हें सही लगे कर सकते हो, किंतु इस व्यक्ति के साथ यह शर्मनाक काम मत करो। किंतु वे तो उसकी सुनने के लिए तैयार ही ना थे। इस कारण लेवी ने अपनी उपपत्नी को पकड़कर उनके सामने खड़ा कर दिया। वे सुबह होने तक पूरी रात उसके साथ बलात्कार तथा दुर्व्यवहार करते रहे। सुबह होने पर उन्होंने उसे छोड़ दिया। जब सूरज उग ही रहा था, वह स्त्री उस बूढ़े व्यक्ति के दरवाजे पर जा गिरी, जहां पूरी तरह रोशनी होने तक उसका स्वामी ठहरा हुआ था। जब इस स्त्री का स्वामी सुबह उठा, उसने द्वार खोले और वह अपनी यात्रा के लिए निकला। उसने देखा कि उसकी उपपत्नी सीढ़ियों पर पड़ी हुई थी। उसने अपने हाथों से डेवड़ी थाम रखी थी। लेवी ने उसे पुकारा, उठो अब हमें चलना है, किंतु उसे उससे कोई उत्तर ना मिला, वह मर चुकी थी। लेवी ने उसे गधे पर लाद दिया और अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने चाकू लेकर अपनी उपपत्नी के शरीर के 12 टुकड़े कर दिए और उन्हें इसराइल के सभी प्रदेशों में भेज दिए। जिस किसी ने यह देखा, उसने यही कहा, जब से इसराइल मिस्र देश से निकलकर यहां पहुंचा है, उस दिन से ना तो ऐसा कभी हुआ है, ना ही ऐसा कभी देखा गया। इस पर विचार करो, हमें कुछ करना चाहिए और उसके विरुद्ध आवाज उठाई जाए। प्रशासक अध्याय 20। दोषी को दंड देने का निर्णय। फलस्वरूप दान से बेशरबा तक सारे इसराइली, जिनमें गिलाद वासी भी शामिल थे, बाहर निकल आए। उन्होंने एकजुट होकर मिस्पा में यहावे के सामने सभा रखी। लोगों के सभी प्रमुखों और यहां तक के सभी गोत्रों के प्रमुखों ने, जो तलवार चलाने में निपुण 400,000 पैदल सैनिक थे, परमेश्वर के लोगों की इस सभा में एक प्रण लिया। यहां बिन्यामीन वंशजों ने यह सुन लिया था कि इसराइल वंशज मिस्पा में इकट्ठा हुए हैं। इसराइलियों ने उस लेवी से पूछा, हमें बताओ यह कुकर्म हुआ कैसे? जिस स्त्री की हत्या कर दी गई थी, उसका पति जो लेवी था कहने लगा, यात्रा करते हुए मैं अपनी उपपत्नी के साथ गिबिया पहुंचा, जो बिन्यामीन प्रदेश में है, जहां हमें रात बितानी जरूरी हो गई थी, मगर गिबिया के पुरुष मेरे विरुद्ध चढ़ आए और उन्होंने रात में मेरे कारण उस घर को घेर लिया। वे तो मेरी हत्या करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने मेरी उपपत्नी के साथ बलात्कार किया, फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। मैंने अपनी उपपत्नी के शव को लिया, उसके टुकड़े किए और उसके इन टुकड़ों को इज़राइल के सभी प्रदेशों में भेज दिया, क्योंकि उन्होंने इज़राइल में यह कामुक शर्मनाक काम किया है। इज़राइल के सभी वंशजों, इस विषय में अपनी राय और सलाह दीजिए। सारी प्रजा एकजुट हो गई। उन्होंने निश्चय किया, हम में से कोई भी ना तो अपने तंबू को और ना ही अपने घर को लौटेगा। गिबिया के संबंध में हमारा निर्णय है कि पासा फेंकने के द्वारा हम मालूम करेंगे कि गिबिया पर आक्रमण के लिए कौन जाएगा। हम इज़राइल के हर एक गोत्र से 100 में से 10 व्यक्ति अपने साथ ले लेंगे, अर्थात 1000 में से 100, अर्थात 10,000 में से 1,000, कि वे सेना के खाने पीने की व्यवस्था करें। जब वे सेना बिन्यामीन प्रदेश के गेबा में पहुंचे, वे उन्हें इज़राइल देश में किए गए सभी शर्मनाक कामों के लिए दंड दें। इस प्रकार इज़राइल के सारे योद्धाओं ने एकजुट होकर इस नगर को घेर लिया। तब इज़राइल के गोत्रों ने सारे बिन्यामीन गोत्र के लिए अपने प्रतिनिधियों द्वारा यह संदेश भेजा, तुम्हारे बीच यह कैसा दुष्टता भरा काम किया गया है। गिबिया में रह रहे उन निकम्मे व्यक्तियों को हमें सौंप दो कि हम उन्हें मृत्यु दंड दें और इज़राइल में हुई इस दुष्टता को मिटा डालें। मगर बिन्यामीन वंशजों ने अपने इज़राइली भाइयों की एक ना सुनी। बिन्यामीन वंशज अपने अपने नगरों से आकर गिबिया में इकट्ठा हुए कि वे इज़राइल वंशजों से युद्ध करें। उस दिन विभिन्न नगरों से बिन्यामीन के तलवार चलाने में निपुण जो योद्धा इकट्ठे हुए, उनकी गिनती 26,000 थी। इनके अलावा गिबिया नगर के ही 700 योद्धा इनमें शामिल हो गए। इनमें 700 शूर योद्धा ऐसे थे जो अपने बाएं हाथ के इस्तेमाल के प्रवीण थे। इनमें से हर एक व्यक्ति एक बाल तक पर भी अचूक निशाना साध सकता था। दूसरी ओर बिन्यामीन वंशजों के अलावा इजरायली सेना में 400,000 कुशल शूर योद्धा थे। सारी इजरायली सेना बेथेल गई कि परमेश्वर की इच्छा जान सके। उन्होंने परमेश्वर से पूछा, बिन्यामीन वंशजों से युद्ध करने सबसे पहले हमारी ओर से कौन जाएगा। यहावे ने उत्तर दिया, सबसे पहले यहूदा का जाना सही होगा। इसलिए इजराइल वंशजों ने बड़े तड़के जाकर गिबिया के विरुद्ध पड़ाव डाला। इजराइल वंशज बिन्यामीन के विरुद्ध युद्ध के लिए निकले। उन्होंने गिबिया के विरुद्ध युद्ध के लिए मोर्चा बांध दिया। बिन्यामीन के सैनिक गिबिया नगर से बाहर आए और इजराइल के 22,000 योद्धाओं को मार गिराया। किंतु इजराइल के सैनिकों ने अपना मनोबल बनाए रखते हुए दूसरे दिन भी उसी स्थान पर मोर्चा लिया जहां पहले दिन लिया था। इजराइल वंशज जाकर शाम तक यहावे के सामने रोते रहे। उन्होंने यहावे से पूछा, क्या हम अपने बंधु बिन्यामीन वंशजों पर दोबारा हमला करें। यहावे ने उन्हें उत्तर दिया, जाकर उन पर हमला करो। दूसरे दिन इजराइल वंशजों ने बिन्यामीन वंशजों पर हमला कर दिया। गिबिया नगर से बिन्यामीन वंशजों ने बाहर जाकर इजरायली सेना के 18,000 सैनिकों को मार गिराया। ये सभी तलवार चलाने में कुशल थे, इसलिए इजराइल वंशज और सभी प्रजा के लोग बेथेल गए और वहां जाकर रोते रहे। वे सारे दिन शाम तक यहावे के सामने भूखे रहे। वहां उन्होंने यहावे को होम बलि और मेल बलि भेंट की। इजराइल वंशजों ने यहावे से प्रश्न किया, उन दिनों परमेश्वर के वाचा का संदूक बेथेल में ही था। अहरोन का पोता एलियाजर का पुत्र फिनिहास संदूक के सामने सेवा के लिए चुना गया था। इजराइल वंशजों ने यहावे से पूछा, क्या हम अब भी अपने बंधु बिन्यामीन पर हमला करने जाए या यह विचार त्याग दें। यहावे ने उत्तर दिया, जाओ, कल मैं उन्हें तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। फिर इजराइल ने गिबिया नगर के आसपास सैनिकों को घात लगाने के लिए बैठा दिया। तीसरे दिन इजराइल वंशजों ने बिन्यामीन वंशजों पर हमला करने के लिए गिबिया के विरुद्ध मोर्चा बांधा, जैसा उन्होंने इसके पहले भी किए थे। जब बिन्यामीन वंशज उनकी सेना पर हमला करने बाहर आए, पीछे हटती इजराइल सेना उन्हें नगर से दूर ले जाने लगी। बिन्यामीन वंशज इजरायली सैनिकों पर पहले जैसे ही वार करने लगे। प्रमुख मार्गों पर जो बेथेल तथा गिबिया को जाते थे तथा खेतों में लगभग 30 इजरायली सैनिक मार डाले गए। बिन्यामीन वंशजों का विचार था, पहले जैसे ही वे हमारे सामने मार गिराए जा रहे हैं। मगर इजरायली सैनिकों ने कहा, आओ हम भागना शुरू करें कि उन्हें नगर से दूर मुख्य मार्गों पर ले आए। तब सभी इजरायली सैनिक अपने अपने स्थानों से निकलकर बाल तामार नामक स्थान पर युद्ध में शामिल हो गए। वे भी जो घात लगाए बैठे थे बाहर निकल आए, वे भी जो मारो गिबा में थे। जब सारे इसराइल से चुने गए 10,000 सैनिकों ने गिबिया पर हमला किया, युद्ध बहुत ही प्रचंड हो गया। मगर बिन्यामीन वंशजों को यह तनिक भी एहसास ना था कि महाविनाश उनके पास आ चुका था। यहावे ने इसराइल के सामने बिन्यामीन को मार गिराया। उस दिन इसराइल ने 25,100 बिन्यामीनी सैनिकों को मार गिराया। ये सभी तलवार चलाने में निपुण थे। बिन्यामीन वंशजों को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। जब इजरायली सैनिक बिन्यामीन वंशजों से पीछे हट गए, क्योंकि वे पूरी तरह उन सैनिकों पर निर्भर थे जो गिबिया के विरुद्ध घात लगाए बैठे हुए थे, तब घात लगाए सैनिक बड़ी ही तेजी से गिबिया नगर पर टूट पड़े। वे सारे नगर में फैल गए और पूरे नगर को तलवार से मार डाला। इजरायली सैनिकों और घात लगाए सैनिकों के बीच पहले से तय किया गया संकेत यह था कि वे नगर में आग लगाकर धुएं का बहुत बड़ा बादल उठाएंगे। तब यह देखते ही इजरायली सेना का प्रमुख दल को युद्ध भूमि में लौट आना है। बिन्यामीन सैनिकों ने लगभग 30 इजरायली सैनिकों को मार गिराया था। उनका विचार था, निश्चित ही पहले के युद्ध के समान ये लोग हमसे हार चुके हैं। मगर जैसे ही नगर के ऊपर धुएं का खंभा उठने लगा, बिन्यामीन वंशजों ने मुड़कर देखा कि पूरा नगर धुएं में आकाश की ओर उठ रहा है। इजरायली सैनिक पलटकर वार करने लगे और बिन्यामीन वंशज भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा था कि उन पर महाविनाश आ पड़ा है। अब वे इजरायली सेना को पीठ दिखाकर निर्जन प्रदेश की ओर भागने लगे, किंतु वे विनाश से बच ना सके। उन्होंने जो नगरों से निकल आए थे उन्हें अपने बीच में मारना शुरू कर दिया। उनका पीछा करते हुए उन्होंने बिन्यामीन वंशजों को घेर लिया, बिना रुके गिबिया के पास पूर्व में खदेड़ कर उन्हें रौंद डाला। इस युद्ध में बिन्यामीन के 18,000 सैनिक गिरे। ये सभी वीर योद्धा थे। बाकी पीठ दिखाकर निर्जन प्रदेश में रिमोन की चट्टान की ओर भागे, मगर इनमें से 5,000 मुख्य मार्गों पर पकड़ लिए गए और उन्हें गिदोम नामक स्थान पर पकड़कर उनमें से 2,000 का वध कर दिया गया। इसलिए उस दिन वध किए सैनिकों की सारी गिनती 25,000 हो गई। ये सभी कुशल 1,000 सैनिक थे, तलवार चलाने में निपुण। मगर 600 सैनिक मुड़कर निर्जन प्रदेश में रिमोन की चट्टान की दिशा में भागे। वे रिमोन की चट्टान के निकट 4 महीने तक रहते रहे। तब इजरायली सेना बिन्यामीन वंशजों के नगरों की ओर बढ़े और सभी को तलवार से वध कर दिया। सारे नगर नाश कर दिए गए। उन्होंने जो भी मिला, नगरवासी और पशुओं सभी का वध कर दिया। उन्हें जितने नगर मिलते गए वे उनमें आग लगाते चले गए। प्रशासक अध्याय 21। बिन्यामीन वंशजों के लिए पत्नी। इज़राइल वंशजों ने मिस्पा में यह संकल्प लिया था, हम में से कोई भी अपनी पुत्री बिन्यामीन वंशज को विवाह में नहीं देगा। इसलिए प्रजा के लोग बेथेल जाकर शाम तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और ऊंची आवाज में रोते रहे। वे इसी विषय पर विचार करते रहे थे, यहावे इज़राइल के परमेश्वर, इज़राइल में क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि आज इज़राइल में से एक गोत्र मिट गया है। दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर एक वेदी बनाई तथा उस पर होमबलि तथा मेलबलि भेंट की। इज़राइल वंशजों ने यह पूछताछ की, इज़राइल के सारे गोत्रों में से ऐसा कौन है जो इस सभा में यहावे के सामने नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने बड़ी गंभीरता पूर्वक यह शपथ ली थी, जो कोई मिस्पा में यहावे के सामने उपस्थित ना होगा उसे निश्चित ही प्राण दंड दिया जाएगा। इज़राइल वंशज अपने बंधु बिन्यामीन वंशजों के लिए खेदित होकर यही विचार कर रहे थे, आज इज़राइल में से एक गोत्र मिटा दिया गया है, अब वे जो बाकी रह गए हैं उनकी पत्नियों के लिए हम क्या करें, क्योंकि हमने यहावे के सामने यह शपथ ले रखी है कि हम में से कोई भी विवाह के लिए उन्हें अपनी पुत्रियां नहीं देगा। जब वे पूछताछ कर रहे थे, इज़राइल के गोत्रों में वह कौन है जो मिस्पा में यहावे के सामने उपस्थित नहीं हुआ है, यह पाया गया कि याबेश गिलाद से
इस सभा के लिए शिविर में कोई भी उपस्थित ना हुआ था, क्योंकि जब गिनती की गई यह मालूम हुआ कि याबेश गिलाद का एक भी निवासी वहां ना था। इसलिए इस सभा के द्वारा 12,000 वीर योद्धाओं के दल को वहां भेजा गया। उनके लिए आदेश था, जाओ और याबेश गिलाद वासियों को, स्त्रियों और बालकों सहित तलवार से मार डालो। तुम्हें करना यह होगा, तुम्हें हर एक पुरुष को मार गिराना है और हर एक उस स्त्री को भी जो पुरुष से संबंध बना चुकी है। उन्हें याबेश गिलाद निवासियों में 400 ऐसी कुआरियां कन्याएं मिली जिनका किसी पुरुष से संबंध नहीं हुआ था। इन्हें वे शीलो की छावनी में ले आए, यह कनान देश में था। तब सारी सभा ने उन बिन्यामीन वंशजों को जो रिमोन चट्टान के क्षेत्र में आसरा लिए हुए थे संदेश भेजा और उनके साथ शांति की घोषणा की। तब बिन्यामीन के वे वंशज लौट आए और उन्हें वे कन्याएं दे दी गई जिन्हें याबेश गिलाद में सुरक्षित रखा गया था। फिर भी कन्याओं की संख्या उनके लिए पूरी ना थी। ये सभी बिन्यामीन गोत्र की स्थिति के लिए दुखी थे, क्योंकि यहावे ने इसराइल के गोत्रों के बीच फूट पैदा कर दी थी। तब सभा के प्रमुखों ने विचार विमर्श किया, बचे हुए पुरुषों के लिए पत्नियों का प्रबंध करने के लिए अब क्या किया जाए, क्योंकि बिन्यामीन प्रदेश से स्त्रियों को मारा जा चुका है। उन्होंने विचार किया, बिन्यामीन के बचे हुओं के लिए उत्तराधिकार का होना जरूरी है कि इसराइल का एक गोत्र मिट ना जाए। यह तो संभव नहीं है कि हम उन्हें विवाह में अपनी पुत्रियां दे दें, क्योंकि इसराइल वंशजों ने यह शपथ ली थी, शापित होगा वह जो बिन्यामीन वंशजों को विवाह में अपनी पुत्री देगा। इसलिए उन्होंने विचार किया, शीलो में जो बेथेल के उत्तर में है, यहावे का सालाना उत्सव होने वाला है। यह बेथेल से शेकेम जाते हुए राजमार्ग के पूर्वी ओर लोबना के दक्षिण में है। उन्होंने बिन्यामीन वंशजों को आदेश दिया, जाकर अंगूर के बगीचों में छिप जाओ, इंतजार करते रहना, यह देखना कि जैसे ही शीलो की युवतियां नृत्य में शामिल होने आए, तुम अंगूर के बगीचे से बाहर निकल आना और तुम में से हर एक शीलो की इन नव युवतियों में से अपनी पत्नी बनाने के लिए एक नवयुवती उठा लेना, फिर बिन्यामीन की भूमि पर लौट जाना। फलस्वरूप उनके पिता और भाई हमारे पास शिकायत लेकर आएंगे, तब हम उन्हें उत्तर देंगे, अब अपनी इच्छा से ही अपनी पुत्रियां उन्हीं के पास रहने दीजिए, युद्ध के समय हमें बिन्यामीन वंशजों के लिए कन्याएं नहीं छोड़ी और ना ही आपने अपनी पुत्रियां उन्हें दी, नहीं तो आप दोषी हो जाते। बिन्यामीन वंशजों ने ऐसा ही किया, उन्होंने अपनी गिनती के अनुसार नृत्य करती युवतियों में से युवतियां उठा ली और अपने साथ उन्हें ले गए। वे अपने तय किए गए विरासत में लौट गए, उन्होंने नगरों को दोबारा बनाया और वे उनमें बस गए। इस समय शेष इजरायली वंशज वहां से चले गए, हर एक अपने अपने कुल और परिवार को, हर एक अपनी अपनी मीरास को। उन दिनों इजरायल देश में राजा नहीं होता था, हर एक व्यक्ति वही करता था जो उसे सही लगता था।